بكتابه المبين وقرآنه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ورباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وقال يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله وقال ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. عاد شوال يومها الحمد لله اب یہ تاریخ ساری دنیا میں اسی انداز سے منائی جا رہی ہے جو اس کا حق ہے. ایک طویل عرصہ جو ہونا اس میں انڈیا اور پاکستان میں وہ 8 شوال کو ہم کی تاریخ کے طور پہ منایا جاتا تھا لیکن باقی دنیا تشیع یا دنیا اسلام اس انداز سے اس کا حق ادا نہیں کیا جاتا. یوم انعدام جنت الباقی اس سے پہلے کہ میں آج کی رات کے حوالے سے اور آج کی اپنی مجلس کے حوالے سے کچھ گزارشات کروں ایک چھوٹی سی بہت اہم وضاحت تو نہیں کہیں گے اس کو اس سانحے کو ابھی پورے 100 سال نہیں ہوئے. اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے 97 انگریزی کیلنڈر کے اعتبار سے 94 لیکن آپ چلے جائیں گے اس وقت ہمارے جتنے علماء ہیں اسکالر ہیں اسپیکر ہیں کتابیں ہیں اور ان سورس کو چھوڑ آپ کو ہر ایک میں تاریخ مختلف ملے. اچھا تاریخ کے اعتبار سے کہہ دوں کہ جب میں جان بوجھ کے رہا جاتا ڈیٹ تو سب نے 8 شوال کون سا سن تھا انگریزی تاریخ 21st اپریل ڈیٹ سب میں تو آپ کو سیم ملے لیکن کون سا سال تھا آپ کو بعد جگہ ملے گا 1925 آپ کو کئی جگہ ملے گا 1926 اور آپ کو کئی جگہ ملے گا 1927 اسی طریقے سے اسلامی تاریخ ایک تو شروع یہ تو کنفرم ہے لیکن کون سا سن 1343 یا 44 یا 45 بہت کوئی 1400 سال پرانی بات نہیں اس زمانے کا تذکرہ نہیں ہے کہ جب تاریخی ریکارڈ محفوظ نہیں کیا جاتا تھا ڈاٹا نہیں رکھا جاتا تھا یہ تو اتنا ریسنٹ بات ہے. ایک طرف میں نے کہا کہ 100 سال نہیں ہوئے دوسری جانے کے لیے جو ہے صرف ایک جنریشن مثلا میرے والد کے جوانی میں یہ بات ہے کہ شاید صرف ایک جنریشن پہلے کی بات اور اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ تاریخ کا کتنا اختلاف ہو گیا. 1400 سال پہلے کے حالات پر بات ہے جب کبھی اس طرح کا اختلاف ہو تو اس وقت کے علماء کی مجبوری سمجھیے اس جملے کی اگر میں مزید وضاحت کروں تو آج کا پورا موضوع رہ جائے. اچھا اب میں یہ بتا دوں کہ ایکچوئل میری اپنی تحصیل سے متعلق ان لوگوں کے حوالے سے جو خود آئی وٹنس سے اس واقعے کے 8th of Shawwal 1344 اور 21st of April 1926 اسی شوال کے مہینے 8 شوال کا یہ سانحہ اور ایک اور بہت اہم واقعہ اسی شوال کے مہینے میں پیش آیا پیغمبر اسلام کے زمانے میں اور وہ ہے جنگ احد غزوہ احد. احد کی لڑائی تاریخ اسلام کی وہ اہم ترین لڑائی جس میں ایک جانب مولا کی اتنی بڑی فضیلت سامنے آئی کہ دلدلال اسی احد کے میدان میں نازل ہوئی. یہ مہینہ اور یہ جنگ احد اس ذوالفقار کے نازل ہونے کا مہینہ اور ذوالفقار کے जो इस वक्त भी जमाने के इमाम के पास है, जिसके जरिए से इन तमाम जालिमों से इमाम इंतकाम लेंगे और जंगे खुद अपनी जगह खुद या गजवा है खुद अपनी जगह खुद। इतने सारे उसके अंदर मैसेजेस हैं कि ये बहुत मुश्किल मुझे लग रहा है कि आज की ये तारीख और इसके बाद इस सवाल के महीने में सिर्फ छठे इमाम की शहादत की मजलिस इस आलसन में होगी तो गजवा खुद को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया जाए, ये बहुत मुश्किल लग रहा है। तो आज सवाल का अपना मौजूद इतना बड़ा, फिर साथ में गजवा खुद, अच्छा गजवा खुद के लिए भी जो बात मैं आज सवाल के हवाले से कह रहा था, गजवा खुद के लिए भी इसको रिपीट करूं, घर के गजवा खुद तो 1400 साल पुरानी बात, गजवा खुद के लिए एग्जैक्ट तारीख में रखते रहा बाद उलमा ने लिखा सभी तो शवाल जो दिन अभी खत्म हुआ और बाद में लिखा जो ज्यादा उलमा ने लिखा 15 शवाल। गजवा खुद के हवाले से दो तीन तारीखी चीजें बयान करके उसका एक बहुत अहम पैगाम वहीं से अपनी मजलिस को आगे बढ़ाना। अरे ये भी एक चीज की वजाहत कर दू कि यौम इन्हिराम जनरल डेमोलेशन ऑफ बसी उसके हवाले से लोगों की एक्सपेक्टेशन यही होगी और होना चाहिए पूरी मजलिस शुरू से आगे तक इसी पर, लेकिन मैं अपनी इस मजलिस का स्टाइल बिल्कुल वो रख रहा हूं जो शहजादी कौनैन ने अपने उस खुतबे का अंदाज रखा जो पहला सुल्तान मोहम्मद पर किया गया और जिसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के आज सारी दुनिया में लोग एक और सुल्तान के हवाले से प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जहां जहां सड़क पे आने की इजाजत है वहां उस सड़क पे भी आ गए तो सोशल डिस्टेंसिंग और वो सारे कवानी का ख्याल करते हुए, जहां पर इसकी इजाजत नहीं है वहां पे ऑनलाइन प्रोटेस्ट है। फिर जो लोग बाकी और तरीके जानते हैं कि किस चीज को लेटर भेजना है, किस चीज को ईमेल करना है, यूएनओ है या ह्यूमन राइट्स के कमीशन है या एमनेस्टी इंटरनेशनल है, वो सब इस जिहाद में लगे हुए हैं। लेकिन पहला प्रोटेस्ट शहजादी कौमैन का आज मोहम्मद पे ढाए जाने वाले मदानी के खिलाफ पहला प्रोटेस्ट शहजादी कौमैन का है जो दरबार खिलाफत में जाकर अपना अजीम तरीन खुतबा दिया। लेकिन उस प्रोटेस्ट का स्टाइल ये थे वो खुतबा शहजादी का इतना अहम होगा अब तो वह पढ़ा जाने लगा है इसलिए मैं जरा आराम से ये बात बयान कर सकता हूं। शहजादी कौमैन का होगा प्रोटेस्ट के लिए जा रही अपना हक भी बयान कर रही आले मोहम्मद की फजीलत में एक खुतबे का आगाज कहां से हो रहा इस अंदाज से हो रहा है कि मुझे याद है जब मैंने पाकिस्तान में एक बार 8 शवाल को इसी अंदाज की मजलिस पढ़ी। जब से पाकिस्तान बना है कराची में तो 8 शवाल का प्रोटेस्ट का जुलूस निकलता चला आ रहा और कई बार मुझे भी उसमें शिरकत का मौका मिला शोभा जब मैंने मजलिस पढ़ी तो किसी ने कह दिया कि मौलाना बेवक्त की राजनीति ये सारी चीजें आपकी मजलिस में नहीं होना चाहिए। वो बात काफी नमाज की बात कर गया शहजादी कौनैन का खुतबा है उस खुतबे को देखिए आगाज जो है कहां से हो रहा है नमाज का जिक्र रोजे का जिक्र हज का जिक्र अपने बीमारों का जिक्र सरकार का जिक्र शराब होने का जिक्र चोरी हराम होने का जिक्र उस खुतबे घर की चोरी में तो एक मुद्दा बनता भी है सबसे बड़े चोरों से मुखातिब हो रही थी इसलिए उसका तस्करा किया। लेकिन उसके अंदर आप देखें तकरीबन सारे अहम वाजिबात को हराम का पहले बयान किया अल्लाह से डरने का मैदान दिया फिर अपने हाथ का तस्करा किया और अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कर प्रोटेस्ट का तरीका भी आले मोहम्मद ने हमको सिखाया कि दीन के जो असल अहकाम हैं जिनकी खातिर आले मोहम्मद ने ये मजारे बर्दाश्त किए शहजादी कौमैन की कमर पे पड़ने वाले कोड़े से लेकर 8 शवाल के रोजे मुनहदिम होने तक ये सारे मजालिम आले मोहम्मद ने इसी दीन की खातिर बर्दाश्त किए और दीन किस चीज का नाम है अकीदे और अमल का और अमल किस चीज का नाम है वाजिबात और हराम का। तो खैर अभी तो मेरी असल तकरीर शुरू नहीं हुई लेकिन एडवांस में जवाब दे दिया मैंने उस एतराज का जो शायद मेरी तकरीर के पहले हिस्से पर हो। अब मैं 8 शवाल के हवाले से एक आखिरी बात अर्ज करूं जिस पर आज जल्दी बहुत से घर और इसी महीने में इसी हफ्ते में यही भी या सर
जो मातम की
सबसे बड़ी दलील बनता है जब जनाबे हमजा पर मातम करने का रसूलुल्लाह हुक्म दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि शहीद रहा है खुदा का मातम सुन्नत है रसूल। लेकिन रोजे तो 8 शवाल और रोजे 2.5 बजे ये सिलसिला अगर आप देखेंगे तो जंगे ओहद से इसका आगाज होगा। जनाबे हमजा के लाशे को पामाल किया गया ये शायद पहला लाशा होगा पैगंबर की जिंदगी जिसे पामाल किया जा रहा। पामाल करनी माना है कि नाक काटी गई कान काटे गए नेकलेस बनाकर हिंदा ने अपने गले में पहना सीना काटे जिगर निकाला जिगर चबाने की कोशिश या शुभ के मसाइल मसाइल के इसी सिलसिले की एक कड़ी हो ना लाशे की पामाली से लेकर रोजों की के इंतजाम करो तो मैदान को तारीख इस्लाम को पहला वाकया है कि जहां पर एक सुंदर कायम की जा रही है उस सुफियान के खानदान की जान से कि वो अपने भूखो अदावत और मुजाहरा किस अंदाज से किया करते। लेकिन इस मैदान ओहद का जो अभी वाकया मैंने जनाब हमजा के हवाले से बयान किया इससे भी यह कदम पहले है जब ये ओहद खासतौर पर हिंदा शिरकत के लिए आई थी लश्कर कुफार के साथ और औरतों की एक फौज तैयार करके आई थी। मालूम हुआ कि रमजान का मेरा एक मौजू 20 रमजान के मजलिस का नाम मुकम्मल है कि दज्जाल क्या फौज लेके आएगा तो ये दुल्ला वहां जाके मुकम्मल होगा ये मौजू नामुकम्मल है अगर मैं जिंदा रहा तो नेक्स्ट मंथ की कुछ मजालिस में उसका जिक्र करूं। लेकिन फिर हिंदा औरतों में ग्रुप तैयार करके आ रही है कि आ रहे हैं मक्के से मदीने जब ये रास्ते में बिटवीन मक्का मदीना तकरीबन हाफ वे पर वो जगह है जिसे मकाम अबवा कहते हैं जो 3 बार तारीख है इस्लाम में उसका अलग से जिक्र होगा एक टाउन छोटा सा गांव 3 मरतबा इसका जिक्र आता है खासतौर पर मकाम अबवा। पहला जिक्र यह आता है कि जब पैगंबर का बेटा और अपनी मां के साथ मदीने आए थे 5 साल की उम्र थी वापसी जनाब आमिना मक्का आ रही है किस जगह पहुंची आप बेटे मकाम अबुआ के इंतकाल को यही कबूल की आज भी जनाब आमिना के कबर अबुआ है। ये पहला तस्करा है जो तारीख है इस्लाम में ये बहुत वाजे तौर पर इस काम का नाम आए और तीसरा तस्करा है कि हमारे सनद के इमाम को बाकी इमाम इमाम जमाना को छोड़कर जो मक्के मदीने के बाहर मकाम अबुआ में पैदा हुए और ये गुना भी बहुत अहम है लेकिन आज का वक्त आज की मजलिस में इतना वक्त नहीं तमाम मासूमी जब मक्के में इजाजत नहीं है मदीने में सिवाय जो सेवन इमाम जो अबुआ में पैदा हुए जमाने के इमाम को सलाम अल्लाह है। लेकिन अबुआ अलग से इस्लामिक हिस्ट्री में 3 मरतबा जिक्र आता है फर्स्ट मैंने बता दिया जनाब आमिना की वफात पर दो तीसरा बता दिया इसके बीच में कौन सा तो यही गलतियां हो मक्के से मदीने जाए तो रास्ते में यह अबुआ पड़ता ही इस सब के लश्कर को यहां पहुंचा कौन सा लश्कर काफिर हो अब उस सुफियान आए थे हिंदा औरतों के दस्ते की कयादत कर रहे और मकाम अबुआ के जो पहुंचे जनाब आमिना के कमर नजर आए हिंदा रुक और उसने पूरा प्रेशर डाला पहुंची होकर कि ये पैगंबर हिंदा का बाप मारा गया था इससे पहले वाली लड़ाई बदल हिंदा का भाई मारा गया था उसी बदल हिंदा का बेटा मारा गया था ये मुआविया का बड़ा भाई इसी में बदल उसका इंतकाम लेने जा रही है ना। लेकिन रास्ते में पहुंची जनाब आमिना की कमर नजर आई रुक गई इसरार करने लगी प्रेशर डालने लगी अपनी पल कि कमर को खोलो मैं आमिना की मैयत की बेहतरामी और बेहुमती करना चाहती इसके बेटे ने मेरे खानदान को दबा दिया है आज मैं उसकी मां से इंतकाम लू यह आज सवाल क्या आज सवाल ये 200 किले का इतिहास है ये सारे वाकयात कि वो भीत है यहीं से तो आगाज हुआ मैयत की बेहतरामी मैयत की कमर को तोड़ना कमर को खोलना ये कर देखो ये जान जनाब आमिना के बहुत मशहूर मिस्र का ऑथर है मोहम्मद रसनैन हैदर उसने हयात मोहम्मद के नाम से जो किताब लिखी है उसने एक पूरी तफसील कब्र खोलो मैयत को निकालो मैं इसकी बेहतरामी करना ही मैदान में बहुत अब फिर मैदान में बहुत मैं पहुंच के जनाब हमजा से देखा और एक आखिरी जुमला कह दूं जिसके बाद फिर मैं अपनी मजलिस का आगाज करूंगा जो मेरा असल रुमान है उस पर। अब ये कि ये जंगे और ये इस्लाम इस्लाम की सात या पंद्रह को तारीख इस्लाम में इसके असरात इतने ज्यादा गहरे कि दरबार जदीद में जब यजीद अपने करबला के वाके पर फख्र करता है तो यही तो कहता है कहां है मेरे बदरों को होते जितने मदानी उठाए गए उसकी रूट खुद यजीद जुल्म करने वाला बहुत से गया और यह आसमान क्या है बिठाए जाने वाले जुल्म है ना। तो यह धरता है बहुत अपनी जगह बहुत अहम मुकाम हुआ फराई के एतराज से दुश्मनी अहरे की जो जड़े घटी और बुनियाद को ईरान इजारे से पढ़ी लेकिन जिस अंदाज से आज कल हम देख रहे हैं वो सारी चीजें आपको मैदान में बहुत नजर नजर आए कब्र को तोड़ने का मसला नाशे को अमल करने का मसला अहले बैत के अथार से इंतकाम लेने का मसला और इसके और सारे और मैदान मगर मैदान में बहुत के हवाले से एक पैगाम बहुत अहम है जिसके लिए मैंने वो तरबीब मांगी थी कि शहजादी ने अपने खुतबे में बता दी या अगर आले मोहम्मद पे ढाए जाने वाले मदाने पर प्रोटेस्ट भी करना है तो पहले इस्लाम को सीखना और वो ये कि जंग के ओहद में मुसलमानों का इतना नुकसान कि रसूलुल्लाह की जिंदगी में टोटल जितनी बाकी जंगें लड़ी गई तकरीबन एक थी उस सब जंगों में मिलकर इतनी कैजुअलिटी की ऐसी हालतें नहीं जितनी सिर्फ एक ही जंग में हो और उसका एक रीजन बहुत सारे रीजन है कभी आप सुनिएगा मैंने फिर पूरा अशरा पढ़ा लेकिन उसका एक रीजन बार बार रिवायतों में ये लफ्ज आया है और हमारे बड़े बड़े रमान माने इसको अपने अल्फाज में एज ए एडवाइस हमें और आपको पहुंचाए कि अपने मुखालिफों को अपने दुश्मनों को अपने समर्थक हमारा कौन मुखालिफ है हमारा कौन दुश्मन हमने किसी का क्या निवाड़ा है कि कोई हमारी मुखालिफत तो दुश्मनी करे यानी आले मोहम्मद का जो दुश्मन है आले मोहम्मद से जिसको बोझा नहीं है उसे दुश्मनी लगता है आले मोहम्मद की वजह से तो बारह जो भी हो उसे जहन्नमी समझो गोरा समझो जो भी समझो बेवकूफ न समझो यह ख्याल ना करना कि तुम अपने मसलन फेसबुक की एक पोस्ट के जरिए से कुफर का या शिर्क का या साजिशों का हाथ ना करो ठीक अकल का लफ्ज उनके लिए इस्तेमाल नहीं हुआ तो उनके इस लफ्ज में एहतराम ये भी कहा गया वो अकल रखते मक्का नुकरा शैतान लेकिन बारह क्लेम होशियार हो मैदान में और भी जो मैदान हमारे सामने आया और यही पे हो माहे मुआद के रमजान से रिलेटेड एक पैगाम मुकम्मल होगा जंगे बदर में मुसलमान जीत और ऐसी कामयाबी हासिल की कि मुसलमान सुन भी नहीं सकते हां और उस वक्त की अरब की सबसे बड़ी ताकत मक्के के काफिरों को ऐसी शिकस्त दी अभी बदर खुद अपनी जगह एक बहुत लंबी बात हो जाएगी और इस तकरीर में तो बहुत सारी बातें जमा करना लेकिन बदर में मुसलमानों और काफिरों का कोई मुकाबला नहीं था। पहला जुमला यह था रात के वक्त यानी बदर की लड़ाई से पहले वाली रात जैसे शर्म याशू करबला में है वैसी शर्म वक्त खुदा वगैरह ये मुट्ठी भर के लिए मानने वाले आज अगर ये शिकस्त आ गए तो फिर तेरा कोई नाम लेवा ना रहे इस्लाम का हक है और दूसरा जुमला सुबह के वक्त था कि ऐ मदीने के मुसलमानों करीम और तरबक्का तुम्हारे सामने है आज इनको मैदान देना मक्के ने अपने जिगर के टुकड़े तुम्हारे सामने रख दिए सारे बड़े बड़े सरदार को जंग में मारे गए इतनी बड़ी कामयाबी थी वो एक एक्सपेक्टेड कामयाबी होगी अनएक्सपेक्टेड कामयाबी में आदमी गुमराह हो जाए गुरूर से भर जाए वो समझता है कि बस अब तो हमें दुश्मन को ऐसी शिकस्त दी है कि कभी सर उठाने के काबिल नहीं हो मुसलमान कितने खुश थे وهم من معاد قلبه سيئون سيغلبون في دفع سجن. کہ آج روم والے ایرانیوں سے شکست آ گئے مگر 9 سال کے اندر اندر یہ واپس کامیاب ہو. یوم ہے اور یہ وہ دن ہو رومن امپائر اس دن کامیاب ہوگی. یوم ہے دن جب کہ مومن ہو جس دن مومن مومن جشن منا رہا ہو فرحا فرحت. اے بھی آپ نئی آپ دنیا میں کوئی نئی ہال اور ایسے ہال ہے کہ یہاں پہ برتھ ڈے پارٹی اور اس خوشی کے گئے نہیں اس کو کہتے ہیں افواہ جشن کی جگہ. یوم ہے دن جب کہ مومنوں کا گھر سے گا اس دن مومن عید منا رہے ہوں گے اللہ کی مدد کی وجہ سے. یہ بات اتنا خوش اب خوشی کے آگے میں واپس آ رہے کہ ہم نے بات ایسی جگہ دے دی تو باہر بتا کے واپس آ رہے بڑے سردار آ رہے ہیں اب تو ہم ہی ہم ہیں. فورا آئے نا دل خبردار دشمن کو کمزور بے وقوع احمق نہ سمجھ. یہ الفاظ میں ہے وہ ہوشیار ہے وہ چالاک ہے وہ مختار ہے وہ پہلے کیا ہے گا اور تم سے انتقام لے گا بنا کے وہ آگے تو نہ ہو مسلطا تو بالکل ہوا ہر وقت دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہو. پاکستان سے تعلق رکھنے والے مومنین اور مومنات اگر میری آواز سن رہے ہیں تو کیا ایک ہی ٹائم پر اتنے سارے مختلف پروگرام اور مجلسے ہیں کہ لوگوں کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہوگا کسے سنا جائے کسے نہ سنا جائے. میں تو اس لسٹ میں سب سے آخر میں آتا ہوں. 2 دن پہلے پاکستان میں 28 مہم منائی گئی یوم تربیت جس دن پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے. تو جس وقت وہ بٹن دبایا گیا بلوچستان میں چادری پر اس آیت کی تلاوت کی جا رہی ہے. سورہ انفال کی آیت ہے جو بدر کی لڑائی کے بعد نازل ہوئی. جو پاکستان نے وہ ایکسپلوژن کیا یہ والی آیت پڑھ کے ہی وہ بٹن دبایا گیا. کون سی آیت؟ سورہ انفال بدر کے بعد کا آیت. دیکھو دشمن شکست کھا گیا ہے لیکن تم ہر وقت الرٹ اور ہوشیار رہے اور تیار رکھنا میری قوتیں اپنی ساری طاقتوں کو مرآباد کے خیر اور اپنی ٹیکنالوجی کو تاکہ تو رہوں نے میری حکومت کا آواز ہوا کو اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن کو ہر وقت ڈراتے رہے. بدل کے بعد پیغام آیا کہ ہوشیار رہنا طاقت بھی تیار رہنا مسلمان کافر ہو. اور پھر اوہ کی لڑائی میں جو آج جو اکثر اس تاریخوں میں کافروں نے پلاننگ سے کام دو بہت ہی چھوٹی چیزیں بتا دوں وقت گزرا جا رہا. نمبر 73 میں اسرائیل جب ہوئی اور مصر نے اسرائیل پر اٹیک کیا تھا تو کیا خیال کر رہی تھی بدر کی کافروں والی پلاننگ کا کہ ایسے سے حملہ کرو انہیں مسلمان کافر عید اور عید کی خوشیاں منا رہے ہیں رمضان کا تو وہ آئے سارا مہینہ روزہ رہتا ہے خوشی کے عالم میں ہے خوشی کے عالم میں آدمی کافر ہو جاتا سیکرٹری ذرا لوز ہو جاتی. شوال کے مہینے میں یہ کیوں آئے وہ حق میدان میں اٹیک کر رہے اسی لیے واحد مسلمان اس طرح ویٹ کر رہے ہوں گے سب لگے ہوں گے کھانے پینے میں. اس وقت تو شراب بھی حرام نہیں ہوئی تھی جن کو عادت تھی وہ شراب بھی پی رہے ہوں گے باقی سارے نیوزلینڈ اور افغانستان میں تو خوشی کا موقع ہوگا. یہ موقع ہے اٹیک کرنے. اور دوسرا خیال کیا کیا مکہ ہے ساؤتھ یہ لوگ ساؤتھ سے نہیں آئے پورا ایک بہت لمبا راؤنڈ لگایا نارتھ سے اٹیک کیا. کہ اگر تھوڑا بہت مکے والوں نے کوئی مانیٹری کا سسٹم رکھا ہوگا مدینے والوں نے مسلمانوں نے کوئی مانیٹری کا سسٹم رکھا ہوگا تو مکہ ساؤتھ میں ہے وہ ساؤتھ کی جانب چیک پوسٹ ہو وہ پورا راؤنڈ لگا کے نارتھ سے آئے بالکل انایکسپیکٹڈ ڈائریکشن. تو پیغمبر نے اسے آرڈر اندر بھی جاری کیا جو مسلمان جس حالت میں جہاں پر ہے اسی وقت وہاں سے اٹھے اور سیدھا میدان میں بول کر پہنچے. چنانچہ وہ وہاں پہ آتا ہے کہ صحابی تو اس وقت غسل جنابت کرنے جا رہے تھے نجس تھے پیغمبر نے یہ فرمان سنا تو بڑی سے پہنچے میدان میں اور میں اسی حالت میں شہید ہوئے پرشتوں کے بعد میں آ کر میدان اور میں انہیں جنت کے پانی سے غسل دیا. تو پیغمبر کو آرڈر تھا کوئی کسی قسم کی تیاری نہیں گھر والوں سے ملنا نہیں کوئی انتظامات نہیں نو پریپریشن جس وقت جس حالت میں انایکسپیکٹڈ ٹائم اینڈ پلیس نارتھ سے آؤ اچانک حملہ کرو. یہ کیوں؟ یہ اس لیے ہوگا کہ مسلمان پہلی کامیابی کے بعد جہاں پہ کافروں کو شکست دے دی ہے کافر ہو گئے जबकि इस्लाम कहता रहा, कुरान कहता रहा, पैगंबर कहते रहे, वो कहने का असर कहां होता? अब यही पैगाम पहुंचा सकता, इसको मिटाई अपने रमजान से। रमजान जो अभी अभी गुजरा है, हमने बड़ी कामयाबी हासिल की। एक तो शैतान वैसे ही कैद में था, और उसके बाद फिर हम अल्लाह की इतनी इबादत किया कि तकवे को बढ़ाया है, नाजा को तकबूर, रातों को जागे हैं, दिनों को रोजा रखा है, इबादतें की है, शक्ल की इबादतें हासिल की। ऐसा ना हो गया आपके लोग, आइए समझो कि हमने इस महीने में इतनी तैयारी कर ली कि आप शैतान को ऐसा हमसे डर के भागे जा रहे, हमारे कहीं भी ना आने पाएगा। नहीं आगे ना होना, बल्कि लड़ाई के बाद मुसलमान जीत के काफिर हो गए, मक्के के काफिर हार के तैयार है, तैयारी कर गया। रमजान के महीने में मोमिन भैया, रमजान की आखिरी आखिरी दुआएं आती है ना, अलविदा की दुआ है, काफी दुआ है, पूरा महीना तेरी काम में गुजारा है, रातों को जाने हैं, दिनों को रोजा रखा है, इबादत की है, दुआएं पड़ी है। अभी हमारे मोहतरम बुजुर्ग दुआएं तौबा के हवाले से कितनी अच्छी मदद सुना रहे थे, तौबा किए तो कुछ किया तो हम कामयाब हो गए। नहीं, वो बहुत ही तरह से शैतान पलट के आएगा और अजीब अजीब तरीकों से आप काम करते हैं। शवाल का महीना जंग बहुत क्या है, मुनासिब तरीन महीना है कि बहुत की तरह से तुम लोग गाफिल हो गया बैठना, अलर्ट होकर बैठना, बल्कि और ज्यादा अलर्ट होना, क्योंकि तुमने इसको इतनी बड़ी शिकायत दी है कि आपको इंतजाम के जज्बे से भरपूर हो गया कहते हैं। और फिर इस जमा के मसाला और हो गए, और वो ये है कि इस साथ कोरोना का प्रॉब्लम चल रहा, और ये प्रॉब्लम खुद ऐसा प्रॉब्लम है जिसके हवाले से शैतान बहुत ज्यादा फायदे हासिल करने जा रहा है। देखिए बीमारी अपनी जगह है, मौतें अपनी जगह है, जो मोमिन के कहा इम्तिहान ले रहा है वो अपनी जगह, लेकिन मसला यही होगा कि मोमिन से भी एक आ गया कि जब कभी कोई ऐसी परेशानी आए उसमें तुम अपॉर्चुनिटी ढूंढो कि अपने और दीन के लिए क्या फायदा हासिल कर सकते। शैतान भी यही पॉलिसी अख्तियार करता कि इसमें से मुझे अपने फायदे की क्या चीज मिले। अब ये रमजान ओहो का पैगाम तो रमजान रमजान के साथ करेला और नीम चढ़ा वाली बात हो गई, या सोने के सुहागे वाली बात हो गई कि ये तो रमजान का मैसेज मिले आपसे ले। रमजान का मतलब क्या होगा? रमजान का मतलब होगा कि आपने शैतान की 11 महीने की मेहनतों पर पानी फेरा। रमजान से लेकर शाबान तक जितना शैतान ने आपको, आपके बच्चों को, आपके घर वालों को गुमराह किया था, बड़ी मेहनत की थी, रमजान में आपने इबादत करके उसकी सारी मेहनतों के पानी फेंक दिया। अब तो पर्सनल रिलीज है, अशरफा ने कुरान कहना होशियार बैठना, हम होशियार नहीं बैठे, वो आगे भी आती है जो मौला ने फरमाया कि रूह और जिस्म, जिस्म की नींद आगे हो जाना, जिसमें की एक नीजर रूह की नीजर आगे हो जाए। तो अभी कोरोना ने और मसले को बढ़ा दिया। अब मैं छोटी सी बात रख सकता हूं, और वो ये है कि हमारे सबको सबसे दो चीजें आदमी की आपकी मजलिस में ऐसी कहने जा रहा हूं जिसके हवाले से मुझे छोटा सा अपना रेफरेंस देना पड़ रहा है, तो मुझे कभी अच्छा नहीं लगता। नंबर एक, ये जो कुरान हदीस होगा, ये जो ताली मैंने हासिल की होती, इसके अलावा मैंने एक डिग्री ली थी टीचिंग की, और एक सर्टिफिकेट मैंने किया था सोशियोलॉजी। अब जो टीचिंग की डिग्री ली थी उसके अंदर हमें चाइल्ड साइकोलॉजी भी पढ़ना पड़ती थी। तो दो बातें मैं आपके अस्तर होगा अपनी तस्वीर के बीस बारह हिस्से, पहला हिस्सा हो गया बीस बारह हिस्सा, आखिरी हिस्सा हो गए आज चौदह के हमारा हिस्सा। तो दो जो दो बातें हैं ये बाकायदा मैंने ऑर्गेनाइज तरीके से कॉलेज के कोर्स के तहत ये चीजें हासिल की है, व्हाट्सएप ईमेल किसी के इंटरव्यू कोई क्लिप्स होते हैं, ये तो छोटी बातें रहने पर सोशियोलॉजी हवाले से वो मुख्तसर में एक दो तीन पॉइंट आपके सामने पेश कर। जब कभी दुनिया में इस किस्म के प्रॉब्लम आए हैं, कोरोना कोई ना कोई टारगेट या गोल अचीव किया। वही बात है सोशियोलॉजी में हमको पढ़ाया गया सरकारी तौर पर तीन छोटी सी बात नंबर 16 और 17 सेंचुरी में यूरोप के प्लेग या ताऊ फैला और कितनी बड़ी तादाद में यूरोपियन मारे गए। अब इंग्लैंड में भी बहुत ही मशहूर है कि रूसी वाला इंग्लैंड में वो लंदन में आग लगी थी तकरीबन पूरा लंदन शहर तबाह हो गया जिसके नतीजे में चूहे भी मर गए और ये बीमारी खत्म हो गई। लेकिन उससे पहले 100 साल कोरोना तो शहर में 4 महीने बाद नहीं हुए हों 100 साल तक पूरा यूरोप उस ताऊ से मुतासिर रहा। अब ये सारी चीजें ऐसी हैं कि मेरे पास इसकी मालूम भी बहुत है लेकिन मैं ये बस आपका जाहिर करना चाहता हूं जिनको इंटरेस्ट है वो तो इंटरनेट पे जाके वो सारी ट्रेनिंग और मालूम अथेंटिक वेबसाइट से नेशनल ज्योग्राफिक है डिस्कवरी चैनल है आपको होगी ही नहीं अंदाजे मिलेगी। मैं तो अपने मतलब की बात करूं कि दीन से इस तरह है उसके नतीजे में क्या हो 100 साल तक जो आज के इस्लाम हुआ जब लंदन में वो आग लगी ग्रेट फायर ऑफ लंदन और आगे से ज्यादा बढ़ गए 75% लंदन तो खत्म हो गए जल गए जब सारी बात आपकी जल गए उसके बाद क्या ये हुआ कि आबादी कम हो काम करने वाले लेबर जो थे वो कम हो बहुत बड़ी तादाद में जब लोग मरे जब लेबर कम हो गए या खत्म हो गए या अब जहन में ख्याल आया कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम तब ये मशीनें याद हुई जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। बाकायदा मैंने कोर्स के अंदर पढ़ा इधर उधर के सुनी सुनाई बात नहीं क्या ऐसी चीजें याद करो कि हमें इंसानों की जरूरत ही ना कम से कम मैन पावर से हमारा काम चले क्योंकि वहां मैन पावर तो हो गई। अब इसका नतीजा क्या निकला ये रेवोल्यूशन आया इसके दो नतीजे पहला नतीजा ये बेरोजगारी बढ़ जो काम पहले 50 आदमी करते थे वो वही काम एक मशीन करने लगे बेरोजगार हो गए। आप दूसरा नतीजा निकला कि मशीन के नतीजे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई और यूरोप की या इंग्लैंड की मार्केट इतनी बढ़ी गई। अब कहा कि दुनिया में निकलो और देखो कहां कहां ऐसे इलाके हैं जहां पे हम अपनी ये पैदावार बेच सकते हैं और अपने फालतू लोगों को जो अनएम्प्लॉयमेंट हो गए वहां बेच सकते हैं पूरा वो जमाना आया कि अफ्रीका में कब्जा किया यूरोप ने पूरा वो जमाना आया कि एशिया में कब्जा किया यूरोप ने जिसमें इंडिया और पाकिस्तान भी है पूरा वो जमाना आया कि साउथ अफ्रीका हो रहा है जो पूरा का पूरा है मगरबी इस्तेमार पूरी दुनिया का कब्जा किया ये नतीजा था ताऊत की बीमारी जिसके नतीजे में मैन पावर न हुई तो मशीनें बनी जो बेरोजगार होते हैं उनको फिट करने के लिए यहां भेजो वहां भेजो वहां भेजो पैदावार को बेचने के दुनिया गुलाम है और आज तक उसके असर आज चल रहे हैं। आज भी दुनिया गुलाम चल जाती है सारी दुनिया के इकोनॉमी इस वक्त मुतासर लेकिन दौलत बढ़ रही है फेसबुक आएगी यूट्यूब आएगी गूगल आएगी एमेजॉन आएगी ट्विटर आएगी देखिए तो माइक्रोसॉफ्ट आएगी जो अभी लिस्ट आई है एकदम से की दौलत कोरोना के अंदर कई गुना बढ़ गई। तो ये वही पूरी दुनिया के कब्जे का कंसेप्ट ही इसलिए आया क्या जो कारखाने पैदावार कर रहे तो कहां पे जाके बेचा जाए और ये लोगों को कहां पे किया जाए और रहे हमने देखा उसके शैतान ने पूरी दुनिया को रूहानियत से निकालकर मेटेरियलिस्टिक दुनिया बनाई। अगर हम इसके और बहुत सारे नुकसान आते हैं लेकिन ये हमारे सामने नहीं है ना तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को 75 साल हुए 75 ये कोई जुड़ी होगी होगी सिल्वर और डायमंड और प्लेटिनियम और कोई नहीं थी कोरोना की वजह से यूरोप में उसको इस तरीके से सेलिब्रेट तो नहीं किया गया लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर को खत्म हुए एग्जैक्ट 75 1945 2020 और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को तकरीबन 100 साल हुए 102 साल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर पूरी दुनिया से इतने मर्द मारे गए और घर से निकलना کہ لاؤ لگائی کا جو ہوتے ہیں وہ بھی گھر میں بیٹھتی تھی اور تقریباً ہی لاؤ لگائی لباس پہنتی یہ میرے جو جملہ میں کہہ رہا ہوں یہ میری فیلڈ نہیں ہے لیکن یہ کی فیلڈ ہے آپ دیکھ لیجیے ہالی ووڈ وغیرہ کی وہ پرانی فلم رہی صحیح کثر وہ ہے پہناتے عورتوں کے حجاب وغیرہ کی پوری کر دیتی لباس بھی اتر گئے گی اور زمانے کا جو کلچر دکھا دے یہ سیکنڈ اور بعد میں مرد آ جائے اب حکومتوں کا نظام تو چلا رہا مرد آ رہا ہے تو عورتیں باہر اور ایک بار عورت باہر آ گئی تو ساری خرابیوں میں جاؤ پہلی خرابی ہے کہ فیملی لائف کے بیٹھے جو اسلام میں بہت امپورٹنس دی گئی ہے فیملی لائف کو کہ پوری کوشش کرو کہ تمہاری فیملی لائف پہ کوئی اثر نہ پڑے یہ اسلام کے پروٹیکشن کا ذریعہ ہے فیملی لائف اسلام کو بچاتی ہے تبھی والدین کی خدمت کا اتنا ثواب ہے تبھی اولاد کی تربیت کا اتنا ثواب ہے تبھی شوہر اور بیوی کے ایک دوسرے کے حق ادا کرنے کا اتنا ثواب ہے تبھی صلہ رحمی کی اتنی تاکید و ثواب ہے یہ اسلام کے کام آنے والی چیز ہے جب عورت کی گھر سے باہر نکلی مرد تو ختم ہو گئے ختم کا مطلب عورت ہو رہے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا عورتوں کا لباس بدلا عورتوں میں میک اپ آیا عورتوں میں بے حیائی ہے صرف اس لیے جو گھر سے نکلی اور گھر سے نکلی اس لیے کہ اتنی بڑی دنیا میں تباہی ہے شیطان نے جو بہترین موقع ہے میرے لیے فائدہ ہوگا عورت کو گھر سے نکال دی جو آپ کو یاد ہوگا رمضان میں نے ایک تقریر کی تھی پی کے گھر درگا پرسار ڈی کے گھر درگا پرسار گھر اور اس کی رپورٹ اندرا گاندھی کو کہ مسلمانوں نے بے حیائی پھیلا وہاں ساتھ ختم ہوگا یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد پھیلی اور میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہا ہوں جو نئی بات ہو آ جائے ساری وہ فلمیں دیکھ لی جو سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے کی بنی ہوئی اب یہ شکر دیکھیے پوری تقریر کا حمزہ اور سلطان میں سے ہر موضوع پہ واضح نہیں ہے میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کورونا ڈیزیز سے شیطان کا فائدہ اٹھانے کی سوچ رہا ہے وہ اپنی جگہ بیٹھا ہوا ضرور اگر اس میں اس کا حصہ نہیں بھی ہے وہ اپنی ڈیوٹی میں بڑا بہت لائل ہے کہ جو بھی اس کے سامنے نیا واقعہ آتا ہے سوچتا ہے اس سے مجھے کیا ملے تاہور کے پلے وہ پلے جو یورپ میں پھیلا اس سے اس نے پوری دنیا کو اسپریچولیٹی سے نکال کے اپنے انڈسٹری بنا دی ساری دنیا کو غلام بنا دی پیسہ پیسہ ڈالر پاؤنڈ کے سب کے ایمان رکھ دیا دو ورلڈ وار کے نتیجے میں آپ کو مغرب سے نکالا اور تیسری اور آخری بات میں صرف اپنی حرکت ہے یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس 1965 میں انڈیا اور پاکستان میں ایک بار کیونکہ اتنا تمہیں معلوم ہے کہ آن لائن پھیل گروپ میں تو مجھے اس میں آیا ہوتا نہیں ہے اتنا ہوتا کچھ ہو اگر مجمع اس وقت آسٹریلین لاؤ کے وکٹوریہ لاؤ کے حساب سے یہاں بیٹھا تو زیادہ تر مجھے انڈیا کے شہر نظر آ رہا ہے تو بہت احتیاط سے بات کر رہا ہوں 65 میں انڈیا پاکستان کی لڑ 65 سے پہلے تھا ابھی بات میں نے کی تھی میرے والد کے زمانے کا بات کر رہا ہوں اپنے زمانے کراچی جہاں میں رہنے والا کافی باتیں میں نہیں جانتا اس وقت کے لیے اتنی کم تھی اور میڈیا اتنا سلو تھا ٹیلیویژن پر بھی آیا تھا کراچی میں 65 اور یہ انٹرنیٹ پر یہ ساری چیزیں تو چھوڑیے تو خلاصہ یہ کہ کتنے ہی ایسے ہیں بلکہ اگر میں ایک جملہ کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا کہ شیعوں کی میجورٹی تھی جن کے گھر میں نہ ریڈیو ہوتا تھا نہ ریڈیو سے مطالعہ ہو رہا تھا ریڈیو تک تو ڈیجیٹل انسٹرومنٹ سمجھا جاتا تھا مجھے یاد میں کراچی میں جہاں رہتا تھا جیسے ہندوستان میں جو دار الشفا وغیرہ علاقہ ہے جو مومنین کی بستی کراچی میں اس جس سے میری پوری گلی جب میں اپنے مکان رینٹ پہ لے رہا تھا تو پہلی کنڈیشن لگا تھا تمہارے گھر میں ریڈیو نہیں چلے گا اگر نوجوانوں کو ذرا شوق ہوتا نا ادھر ادھر گڑبڑ باتوں میں جانے کا تو مان کی دکان کے اوپر وہ ریڈیو رکھی ہوتے تھے جس میں ریڈیو سیل آن بجا کرتا سنا وہاں بہت اچھا کچھ سو 8 بجے فلمی گانوں کا پروگرام آتا تھا خیر یہ ساری گھڑی چیزیں آئی تھیں کسی گھر کسی عمر میں میجورٹی ہو گھر اس کو رامن حرام اور گانے بجانے کے آلات سمجھتے میری مایا رمضان کی ایک تقریر ہے نا پکچر کی جگہوں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے तो म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट है और ताश है और जुए के आलात है और ये मर्दा औरत है उसमें रेडियो भी समझाया जाता है सिक्सटी फाइव की वॉट और एक ऐसी जंग कि बहुत सारे लोगों ने जिंदगी में पहली जंग लेकिन तो हर जंग में उनको न्यूज चाहिए सिर्फ न्यूज हर एक घंटे के बाद मिलता आना था उसमें न्यूज होती सही कलर से तालमेल नहीं लेकिन न्यूज हर आदमी को जरूरत कम नहीं थी उस वक्त की सोसाइटी की न्यूज और न्यूज का जरिया सिर्फ रेडियो न्यूज पेपर तो आते थे चौबीस घंटे के बाद वो भी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इतनी पुरानी थी कि उसमें दो दिन पुरानी खबरें होती जंगों में तो ऐसा नहीं होता ना दो दिन पुरानी खबरें आपको चाहिए उसकी वजह से मेरे अपने घर में पहला रेडियो इसलिए खरीदा गया क्या है खबरें सुनना और बाकी मेरे जाने को अब वो रेडियो ये दबा हमारे घर में आ गए तो उसने फिर अपने साथ अपने पूरे गांव के सिलसिला रेडियो से टीवी आया टीवी से डिश एंटीना आया डिश एंटीना साहब की चीज ये सब एंटर जिस घर में पहले खबरों के लिए रेडियो को हराम समझा जाता था वहां कभी कभी जाने को जाएंगे प्रोग्राम होने क्यों रेडियो आ गया था एक बार एंटर हो गया तो वो तो अपनी सारी शरारतें दिखाए कोरोना का वायरस आपके किसी में पहुंच गया तो पहुंच गए अब इसके बाद तो उसकी शरारतें शुरू हो जाए ये 65 की जंग अगर ना होती तो शायद कोई आदमी यकीन से तो नहीं कह सकता इतनी तेजी के साथ ये गाने बजाने के आलाप और बेहयाइयों के साथ बहुत खराब नहीं हो इसमें अपनी आंखों की देखने की बात कर रहा हूं नाबालिग था छोटा था लेकिन इतना मुझे पता कि न्यूज के चक्कर में कितने घरों में रेडियो आया और फिर वो जब आया तो अपने साथ साथ सारी खराबियां लिया तो अब हमने देखा इस मुख्तसर से जिंदगी जब इस किस्म की कोई आपदा तो तबाही और बर्बादी आती है या कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी का मौका था शैतान बहुत सोचता है कि इसमें मैं अपने मिशन को कैसे आगे लोगों को एक अल्लाह की इबादत से हटाकर दिरहम और दीनार डॉलर अकाउंट का पुजारी कैसे बना घर में बैठने वाली औरत को बेहया और बेपर्दा बना के घर से बाहर निकाल के फैमिली लाइफ को कैसे दरहम और हम जिस बोरी के घर में दूर दूर तक किसी मौसीकी का वजूद नहीं है उनके चाचा और पांचवा साल के बच्चों को किस तरह ऐसे ऐसे गाने से कि आदमी हमारे सामने बोल वो बोल बोले यार तो हमको शर्म आ जाए हर जगह शैतान ने मोहम्मद को फैला उठाया कोरोना डिजीज अच्छा इसकी बहुत सारी खराबियां होंगी ये पूरा एक बहुत आप समझ रहे हैं कि पूरा एक अच्छे प्रभाव लेकिन मैं बहुत मुख्तसर दो बातें बताकर आज की रात के असल पैगाम पर तो बहुत मुख्तसर दो और बहुत सारी बातें हैं यानी इससे शैतान क्या ट्रेनिंग कर रहा और कुरान करीम ने अगर इस्तेमाल किया हमारे यहां आर्मी में तो पूरी आयत पढ़ दी जाती है इंग्लिश ट्रांसलेशन में सिर्फ आधा जुमला पढ़ा जाता वो मतलब वो मतलब अल्लाह अल्लाह खैर नाफिरीन के अल्लाह बेस्ट प्लेनर मगर आयत कहां से शुरू हुई कि शैतान भी प्लेनर है वो मतलब इन शैतानों ने अपनी तरफ से ट्रेनिंग की शैतान भी एक प्लानर है अल्लाह भी एक प्लानर है अल्लाह इस वक्त मतलब शैतान है ना अब इस वक्त में आए के पहले सेनों की शैतान जीत रहे दो छोटी बातें इस वक्त बता रहा हूं अगर ये दोनों बातें ऐसी जो बहुत ज्यादा डिटेल वाली है और हमको एक बार गौर करना है आज के लिए माहौल लेकिन टाइम बाहर कम है क्योंकि अलसर अलसर इस्लामिक सेंटर मेलबर्न में मुझे मुश्किल से महीने में एक आध स्पीच का मौका मिलता कोई भी कोरोना की वजह से मना शायद उस वक्त में कहीं और होता तो उस एक स्पीच में बहुत सारी बातें जमा तो कर देता हूं लेकिन मुख्तसर बता नंबर वो यह है कि आप देखिए इस कोरोना के नतीजे सेकेंड कोरोना के नतीजे में लोगों को निकाला है बेहया बेशर्म बेपर्दा बनाया है ना हमारे घर में बैठने वाली औरत ना अपने लिबास की इतनी परवाह होगी ना अपने मेकअप की होगी लेकिन इतनी ज्यादा घर से बाहर निकले लामहरम हो जाए कि लोगों के सामने इस तरह जाए कि उसको बुरी निगाह से ना देखे कि रिलेटिव नजर आ रहा है कि अच्छी नजर आ रहा है सब चेंज आएंगे और फैमिली लाइफ टूटेगी ठीक है ये उसकी खराबी अब आइए कोरोना ने रिवर्स काम शुरू किया कि मर्दों को भी घर में बिठाना शुरू कर दिया
शैतान को मुसलमान हासिल हो गए उस अच्छे बेपर्दा हो गई बेनाक हो गई और वो सारी शराबियों में नजर पहनने लाए थे बेपर्दा हो गई अब वो दोबारा गुजारनी है चाहे आप दोबारा उनको घरों में ले आए
मजा आ रहा है ठीक है वो तो कमर्शियल दुनिया है उससे मेरा क्या था मेरा ताल्लुक नेवी से कि कहीं ये चीज आगे बढ़कर मस्जिद इमाम बाड़े और मजलिस के हवाले से ना हो अच्छा इसके अंदर भी मैं ज्यादा बात इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मस्जिद मजलिस इमाम बाड़ा ये बहरहाल अभी मैच्योर लोगों के बीच की चीज और मैच्योर लोग मुझे पता ऑनलाइन मजलिस में भी उनको वो रूहानी मजा नहीं आ रहा होगा जो हॉल में आके बैठने में मैं तो नेक्स्ट जनरेशन की बात कर रहा हूं मुझे जो खतरा लगा और महसूस हुआ क्योंकि मैंने बाज सेंटर्स के ये जुमले सुने कि ये जो हमारे एक संडे स्कूल होता जिसमें हमारे बच्चे आते हैं जमा होते हैं यहां पढ़ते हैं ये तो जो हम जो फिजिकली उनको बुलाते हैं बिल्डिंग में इससे तो अच्छा सक्सेसफुल हम जा रहे हैं ऑनलाइन टीचर अपने घर में बैठा है बच्ची अपने घर में बैठे और ऑनलाइन मदरसा बहुत अच्छा जा रहा है ये चीज कहीं खतरनाक ना बने ये मैसेज मुझे देना था बरादर मोहतरम जकी पंजू साहब को वो कुछ आवाज का मसला ऐसा आ रहा है कि वो बैठ ही नहीं पा रहे यहां पे वो आते हैं तो मैं इस मौजू पे आता हूं कि अब वो बैठेंगे लेकिन वो फिर आके फिर चले जाते खैर तो खुलासा ये कि जितने भी इस वक्त दुनिया में इस्लामिक सेंटर्स हैं सबके साथ एक संडे स्कूल होता अब वहां भी सबको संडे स्कूल के जो ऑर्गेनाइजर है उनको मजा आ गया टीचर्स को मजा आ गया आराम से घर में बैठे हुए एक घंटा पहले तैयारी करना होती है अगर इस खुद आना है फिजिकली वो सब चीजों से बच गए बच्चों को भी मजा आ गया ऐसा ना हो नेक्स्ट स्टेज ये हो याद रखी मैं अपने दो तजुर्बे एक अपना जितनी भी मेरी उम्र है वो मैं कभी डिस्क्लोज नहीं करता जितनी भी उम्र है उसका तजुर्बा प्लस हाँ ये कह दो कि 50 साल का तो तजुर्बा है ये प्लस जो मैंने चाइल्ड साइकोलॉजी का कोर्स किया ये जो हमारे स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज के जो संडे स्कूल यहां के कोर्स की इतनी अहमियत नहीं यहां बच्चे को क्या पढ़ाते हैं इसकी इतनी अहमियत नहीं चनाचे अक्सर मैंने देखा तकरीबन यहां के जितने यहां से मतलब ऑस्ट्रेलिया नहीं मैं तो इंग्लैंड में अमेरिका में कैनेडा आपको पता है हर जगह जब कोई बाहर से मजलिस पढ़ने आता है उस स्पीकर को संडे स्कूल जरूर विजिट कराया जाता तो सारे मैंने घाट घाट का पानी पी के सारे मदरसे देखे जो 10-10 साल से मदरसों में पढ़ते हैं मदरसों से मिस संडे स्कूल उनसे मैंने पूछ लिया जनाबे फातिमा कौन थी कहा रसूल खुदा की बहन थी ये नॉलेज का लेवल है लेकिन फिर भी मैंने इस पर कहा कि कोई ये ऐसी चीज नहीं बहुत टाइम है हमारे पास असल चीज कोर्स नहीं है कि बच्चा कुरान अच्छा पढ़ने लगा या उसने कुछ असल चीज वो माहौल है कि जहां पर दीनदार या बेदीन फैमिली लेकिन मोमिन फैमिली के बच्चे एक दूसरे से मिलते हैं। हफ्ते में 6 दिन जिस माहौल में वो रह के आते हैं। बहरहाल हमारा कितना ही बुरा संडे स्कूल क्यों ना हो, इलाज में बहुत बाजरे नाखास्ता इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि वक्त हाथ से निकला जा रहा है, लेकिन जो एक माहौल बनता है शिया बच्चों से मिले, मुसलमान बच्चे मुसलमान बच्चों से मिले, एक दूसरे से इंट्रेक्शन हो, कुछ ना कुछ दीन की बात होगी, वो 6 दिन स्कूल में कॉलेज में शॉपिंग मॉल में प्ले ग्राउंड में कहां कहां खराफा सुन के आया, उसने ये माहौल देखा नहीं होता है, माहौल दिखाना। ये चाइल्ड साइकोलॉजी में हमें पहला सबक यह पढ़ाया गया था कि बच्चे को कभी अकेले ट्यूशन न दें, वो बच्चा जो है ना वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा, वो फिर लोगों के बीच में काम नहीं कर सकेगा, जैसे एक बीमारी ऑटिज्म की होती है ना उस टाइप का बच्चा बन के रह जाएगा। बच्चे के लिए तालीम से ज्यादा अहम वो माहौल मुहैया करना है जिसमें वो लोगों से इंटरेक्शन मिलने मुलाकात करने, इससे जो वो गेन करेगा वो कोर्स से ज्यादा अहम होता। और ये इस्लाम का बहुत पुराना मैसेज, वरना याद रखिए मैं अपनी बात भी करूं और आप में से भी बहुत से लोग तस्दीक करेंगे, जितना मजा घर की तन्हाई में अकेले मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ने में आता है उतना मजा मस्जिद के उस डिस्टर्ब माहौल में नहीं आता है कि एक साहब आ रहे हैं एक साहब जा रहे हैं एक साहब बोल रहे हैं एक साहब एतराज कर रहे हैं एक साहब हाथ मिला रहे हैं एक साहब कुछ कर रहे हैं। लेकिन इस्लाम ने फिर भी कहा कि 9 से ज्यादा नमाजी आ जाए तो इतना सवाब है कि सारे फरिश्ते मिलकर वो सवाब नहीं लिख सकते। क्यों? जमात नमाज क्या चीज है? वही नमाज तो है जो आप घर में पढ़ते हैं, बल्कि एक एतबार से घर की नमाज इसलिए ज्यादा बेटर है कि उसमें अलहमद सूरा आप खुद पढ़ रहे होते हैं, यहां तो आप पढ़ भी नहीं रहे, सुन रहे हो, सुनते वक्त कंसल्टेशन पता नहीं कहां चला जाए। लेकिन इस्लाम में रोहबानियत हराम है, यह भी रोहबानियत की एक किस्म है कि माशरे से खट के बैठ जाना, मस्जिद जमात इमामबाड़ा मजलिसें जुमा ईद ये सब इसकी चीजें हैं, लेकिन बड़े लोग फिर भी सरवाइव कर सकते हैं। बच्चे को अगर आपने माहौल ना दिया, ये माहौल आप अपने घर में दे ही नहीं सकते जो उसको संडे स्कूल में मिलेगा, चाहे वो कुछ पढ़ के ना दे। लेकिन मैं देख रहा हूं ये खराबी सामने आ रही, इमामबाड़े वाले भी खुश हो रहे कि जी हमारे इतने खर्चे बच रहे हैं और हमारी इतनी मेहनत हमको जो करना पड़ रही है तो आधी मेहनत रह जाएगी। हमारे एक लफ्ज इस्तेमाल होता था तालीम से ज्यादा अहमियत तरबियत की, ये तरबियत का एक पार्ट होता है। खैर ये देखिए पूरी एक मजलिस, क्या मैं खमसा तो पढ़ सकता हूं इसके ऊपर कि गुनाहों के समंदर के अंदर ये नेकियों के जजीरे हैं, संडे स्कूल चाहे बच्चा यहां कुछ ना सीखे, इसी को हम तबाह कर रहे हैं। ये हम नहीं कर रहे, कोरोना डिजीज कम अज कम वक्ती तो फायदा नजर आ रहा है ना, लेकिन ये इतना बड़ा नुकसान है नंबर एक। और नंबर दो और आखिरी बात, यानी क्या दो और आखिरी बात, कोरोना के हवाले से ओहद से शैतान और शैतान से फिर रमजान और रमजान से फिर हमारी गफलत और उस गफलत से शैतान की मकरू पॉलिसी प्लानिंग आपको बताई, तो अब आ जाइए इसकी आखिरी बात सुनी और वो ये दूसरा नुकसान। अब ये बच्चों की बात या बड़ों की बात, थोड़ा सा वक्त मुझे भी मिल गया था इस कोरोना में, अगर चाहे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट बल्कि दुनिया भर की जितनी गवर्नमेंट उन सब ने जो कोरोना की एक लिस्ट बनाई है कि हाई रिस्क कैटेगरी में कौन लोग हैं, उसमें मैं हूं, एज के एतबार से भी अपनी उस बीमारियों के एतबार से भी, तो वो थोड़ा सा वक्त मिला, इसका मतलब ये नहीं था कि मैं लोगों से मिलने लगूं, नहीं आ रहा, तो उसमें थोड़ा बहुत मैंने इंटरनेट पे बहुत सारे यूट्यूब पे खासतौर पर फेसबुक पे कुछ क्लिप देखे। मैं क्लिप का जो कभी कायल नहीं रहा हूं क्योंकि मुझे खुद पता है कि मेरी कितनी तकरीरों को काट काट के कहा कुछ गया मैसेज कुछ, लेकिन जहां क्लिप अपनी जगह खुद कंप्लीट हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से खुतबा शुरू करे वो साहब और आखिर में दुआ पे खत्म करे वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह, और पहले से हो कि 10 मिनट का क्लिप है उसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं। अब देखिए जो बात मैं कह रहा हूं यह कोई बेपरदगी की तरह या बेहिजाबी की तरह का गुनाह नहीं है, लेकिन यह खराबी जो आहिस्ता आहिस्ता इंटर हो जाएगी तो तबाही हो जाएगी, वो ये कि इंटरनेट पे मैंने देखा कि इस दौरान बहुत सारे लोग बाद साहिबाने इल्म मसाइल के और दीनी फतवों के क्लिप बना बना के इंटरनेट पे अपलोड कर रहे हैं, लोग भी खाली हैं देख भी रहे, लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो मैंने इस वक्त खराबी पाई, मुझे उसके एग्जाम्पल भी देना थी लेकिन अब टाइम नहीं रहा, किसी और मौके पर, कि ये जो इस तरह के क्लिप इस वक्त मैं देख रहा हूं मसाइल के बने हुए, इसमें एक बड़ी खराबी आ गई है कि ये बहुत मुश्किल सा लफ्ज मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, मुझे खुद इसकी तफसील भी नहीं पता कि मसाइल नहीं बयान हो रहे, चूचू का मुरब्बा बन रहा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुंभा जोड़ा बना। हमारे यहां यूपी में एक डिश बनाई जाती थी दीवानी हंडिया, वो दीवानी इन मानों में होती थी जो कुछ आपके घर में बची कुछ ही सब्जियां काट काट के सब एक साथ डाल के मिक्स कर दीजिए, ये इस वक्त नजर आ रहा। यानी बहुत अच्छे मौजूदात पे बात हो रही, वजू का तरीका भी है, गुसल का तरीका भी है, चांद के मसले भी हैं, फितरे के मसले भी हैं, रोजे के मसले भी हैं, लेकिन चाहे किसी को पसंद आए या ना पसंद, मगर ये इस्लाम में एक बुनियादी मसला है कि तकलीद लाजिम है, और तकलीद का मकसद जिस मर्जी की आप तकलीद कर रहे हैं आपको अमल उसी के फतवे पे करना, कितना ही काबिल एहतराम, कितना ही मुत्तकी, कितना ही परहेजगार मर्जी क्यों ना हो, अगर आप उसकी तकलीद में नहीं है तो उसके फतवे पे अमल नहीं कर सकते। दौरे आखिर आगे तकिए बहजा जैसा तकवे का मुजस्मा और पैकर आपको कहां मिलेगा, लेकिन फतवा पे आप अमल नहीं करेंगे। फतवा अगर आप मुकल्लिद रहबर के हैं तो रहबर के, और अगर मुकल्लिद आगा सिस्तानी के तो आगा सिस्तानी। ये जो मैं क्लिप देख रहा हूं इसमें चूचू का मुरब्बा, एक मसला इनका एक मसला उनका, वजाहत भी नहीं है, वो बस बयान करते चले आ रहे हैं कि इस तरह से वजू फितरा देना, इस तरह से रोजा रखना, इस तरह से फला इबादत करना, लेकिन एक मसला रहबर का लिया, दो मसले आगा सिस्तानी के लिए, दो मसले किसी पुराने मुश्ताहिद के लिए, दो चार चीजें अपने दिल से जोड़ी, एक क्लिप बना के दे दी। अच्छा ऑर्गेनाइज तरीके से समझा समझा के, सुनने वाले भी कहें कि तो बहुत आसान इन्होंने कर दिया इतने मुश्किल मसले को, इसी को सुनो। और एक नहीं, मैं इस वक्त कह दूं कि 95% से ज्यादा मैंने ऐसे ही क्लिप देखे, उस पर आप अमल कर ही नहीं सकते, लेकिन बड़ी तेजी के साथ पॉपुलर भी हो रहे हैं, लोग सुन भी रहे हैं, क्योंकि बनाने वालों को भी पता है कि 10 मिनट का क्लिप लोग देख लेंगे, एक घंटे की मेरी तकरीर कौन सुनेगा। अब 10 मिनट से भी कम हो के 8 मिनट और 5 मिनट के क्लिप आ गए, एक मसाला वाजे किया, खत्म बात। लेकिन सुनने वाले के लिए तो गुमराही है, बड़ा मुश्किल लफ्ज आ गया, लेकिन है, सिवाय अखबारी उलमा के बाकी सब कायल हैं इस बात के कि तकलीद तो वाजिब, और तकलीद वाजिब का मतलब तकलीद एक नाम नहीं है कि हम आगे सिस्तानी की तकलीद में, तकलीद अमल है कि आपको हर चीज उनके फतवे के मुताबिक अमल करना, या रहबर की तकलीद हर चीज उनके फतवे के मुताबिक। और इसी में बस मैं आखिरी बात कह दूं, हां सिर्फ एक मौका ऐसा है कि जिसकी आप तकलीद में हो, तो यह आखिरी बात इस जुमले पर शुरू, इससे पहले वाला जो नुकता है इसका आखिरी जुमला कह दूं कि जितने क्लिप ऐसे घूम रहे हैं मसले मसाइल के आप अमल नहीं कर सकते, अनलेस ये कि आपको ये कंफर्म ना हो कि ये सारे मसले आपके मर्जी के मुताबिक। और अब तो बाज साहिबान इल्म की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि वो अपने लिबास का गलत फायदा उठा के अपने नजरियात देते हैं मराजे पर एतराज करते हुए। मसलन जो बिल्कुल रिसेंट बात है ना, रिसेंट नहीं बिल्कुल फ्रेश बात है, आगा सिस्तानी का मसला है, को माने के ना माने कि चांद उसी वक्त साबित है जब आंख से देखे, नो टेलीस्कोप, और ये तकरीबन मेजोरिटी ऑफ उलमा का, रहबर का फतवा है कि नहीं, चांद देखे चाहे टेलीस्कोप से हो चाहे आंख से हो। अब हम जिसकी तकलीद में उसके मसले पर अमल करेंगे, लेकिन एक गैर मुश्तहिद को यह हक नहीं है कह के आगा सिस्तानी ने कैसा नॉनसेंस फतवा दिया, देखना तो देखना होता है, आंख से देखो कि टेलीस्कोप से देखो, आपको बाकायदा क्लिप मिलेंगे इंटरनेट पे बड़े पॉपुलर, भाई मेरे पास तो पॉपुलर कहे कि मैं यार कितने लोगों ने देखा, 1 लाख से ज्यादा लोगों ने ये देखा क्लिप। किसी ने कहा नहीं मौलाना इसके भी तरीके होते हैं, पार्टियां होती हैं, उनको आप पेमेंट करें तो आपको 10,000 व्यूज व्यूअर दे देते, खैर मुझे ये सब नहीं पता ना, मेरे पास टाइम है। अरे तुम कल के बच्चे, और अपनी एक जाती राय के देखना देखना होता है, और कह दो आगा सिस्तानी का फतवा गलत है, नाम नहीं लिया, लेकिन जब फतवे पे एतराज किया कि जो मराजिए कहते हैं कि टेलीस्कोप गलत है वो गलत कहते हैं। अब ये कोरोना कौन देखता आम हालत में ऐसे क्लिप, 1 लाख व्यूअर किसको मिलते हैं, कोरोना की वजह से मिल रहे हैं। हां सिर्फ एक मौका है जब एहतियात वाजिब आपका मर्जी लगा दे, तब आपको इजाजत है कि इसमें आप दूसरे मर्जे की बात माने, लेकिन दूसरा से मतलब क्या है, जो इल्म में भी आपके मर्जे के बाद। यह नहीं है कि फिर हमारे मर्जे ने एहतियात वाजिब लगा या फ्री हैंड है, कोई भी मुश्तहिद का फतवा मिले तो अमल कर लो, और यह बहुत काम की चीज। अब मैं इसकी एक मिसाल दूं, बाकी बातें इस पर मुझे 10 मिसालें देना थी, अब वक्त नहीं। शहजादी कौनैन के खुतबे में भी आप जाके देख लीजिए, यह हिस्सा ज्यादा है, वो हिस्सा इससे कम ही। बस मैं अब आखिरी जुमले पे आने वाला हूं आज के हवाले से, लेकिन ये बात असल बात तो यह कि इस इन चीजों को बचाने के लिए अहले बैत ने अपने घर के दरवाजे को जलने से लेकर जन्नतुल बकी की कब्रों के टूटने तक को बर्दाश्त किया, वरना ये जालिम तोड़ सकते थे, अजाब खुदा आ जाता, सब बर्दाश्त किया, सिर्फ ये इस्लाम बचे। तो थोड़ी सी उसकी बात हो रही थी, लेकिन एक आखिरी बात, अब एक छोटी सी बात। शिया उलमा में एक फतवा बहुत मशहूर है, और बरादरान अहले सुन्नत के यहां तो शायद तकरीबन वाजिब के बराबर, कि रमजान खत्म हो 3 दिन के गैप के बाद 4 से 9 शव्वाल तक 6 रोजे रखने का बहुत सवाब है। आगे सिसानी कहते हैं कि नहीं, मेरे नजदीक साबित नहीं, क्योंकि लेअन्नहा गैरा नकियत सनद, जितनी रिवायतें शव्वाल के 6 रोजे को बताती हैं वो सब की सब रावियों और सनद के एतबार से गैर नकी, नकी कहते हैं पाक, गैर नकी वो पाक नहीं, यानी सब में गड़बड़। ठीक, बाकी महाराजे मानते हैं इसको, तभी तो कहते हैं कि आप इसका सवाब, लेकिन मसला जो मैं बताने वाला था, अगर हम मुकल्लिद आगे सिस्तानी के, मैं नहीं, मैं ये भी वाजे कर दूं, लेकिन जो उसूल है वो तो अपनी जगह है ना, कि तकलीद किसी की करें, एहतराम तो सबका वाजिब है। आगा सिस्तानी फरमाते हैं कि रमजान के बाद रोजा तो हमेशा सवाब है, सिवाय हराम दिनों के, कभी रोजे रखो, लेकिन यह समझना कि 4 से 9 शव्वाल, शव्वाल के 6 रोजे मुस्तहब हैं, यह सही नहीं। चुनाचे अगर कोई ये रोजे रखना चाहे तो रोजे ही तो रखना है ना, कभी भी रख सकते हो, इनमें भी रख सकते हो, तो वह रेजा की नीयत करे, अगर उसके जहन में कि तारीख का सवाब, रोजे का सवाब लेना है तो ठीक, कुर्बत की नियत करे, और अगर कहीं 4 शव्वाल और 5 शव्वाल का सवाब लेना तो रजा की नियत करे। अब रजा और कुर्बत का फर्क आइंदा के लिए बात छोड़ दी। तो अब ये जो चीजें हैं ना, ये इस्तिलाहात भी समझना बहुत जरूरी। मुश्तहिद ने कहा कुर्बत, कहा कहा रजा, कहा कहा एहतियात वाजिब का, और लोग नहीं समझ पाते, ये जिहालत, जिहालत का नजर अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन लाइलमी चले, लाइलमी ये मोमिनीन को इतनी खराबियों में मुबतला कर देती। तो शैतान तो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, खाली वो कोरोना डिजीज या सेकेंड वर्ल्ड वार या 65 इंडिया पाकिस्तान वॉर या 1643 लंदन की ग्रेट फायर, खाली इससे फायदा नहीं उठाता, सबसे ज्यादा तो लैक ऑफ नॉलेज से फायदा उठाता। चुनाचे इसी लैक ऑफ नॉलेज के नतीजे में अंग्रेजों का बनाया हुआ इस्लाम खत्म करने का इतना बड़ा मंसूबा, और वह देखते ही देखते इतना पॉपुलर हो गया कि वहाबियत इतने पंजे जमा के आलम इस्लाम में बैठ गई। ये किसका लाया हुआ फितना, फायदा किस चीज से उठाया, फायदा उठाया लोगों की लाइलमी से, इबादत, इताअत, इत्तेबा, तकलीद, सब अल्फाज अलग अलग, हमारे यहां सबको घुमा फिरा के मिला दिया जाता। खैर, मैं अब अपने लोगों की बात नहीं कर रहा, ये जुमला तो सिर्फ उनके लिए कहा जिन्होंने कहा हम तो इमाम जमाना की तकलीद में, इमाम की तकलीद की नहीं जा सकती, इमाम की इताअत होती है, या अय्युहल्लज़ीन आमनु अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलुल अम्र मिनकुम, इताअत बहुत ऊंचा मकाम है, तकलीद होती है मर्जे की, मर्जे तक आपको एक फतवा दे रहा और गलत फतवा दे रहा, आप देख रहे हैं तो आप नहीं मानेंगे, इमाम अगर आपको वजू का गलत तरीका बता रहे हैं तब भी आपको उस पर अमल करना, क्योंकि वो इताअत है। ये अल्फाज का फर्ज जो है ना, ये कम इल्मी की बिना पे सब लोग मिला देते हैं बहुत सारी बातें, लेकिन आलम इस्लाम की इसी ला इल्मी और जहालत से फायदा उठाया। ये आलम इस्लाम जाहिल हमेशा से रहा, ये वो लोग हैं कि जिन्हें बुध के दिन जुमे की नमाज पढ़ा दो तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जिन्हें ऊंट और ऊंटनी का फर्क नहीं मालूम, ऐसे ही लोग अली के खिलाफ मैदान में आएंगे। अली वाले हमेशा अवेयर भी होते हैं, नॉलेज वाले भी होते हैं। आज अगर कहीं कहीं पर हमको कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो अली वाले होकर भी ला इल्मी का मुजाहरा कर रहे हैं, वे गलत चीज है। लेकिन एज ए पॉलिसी, एज ए रिलीजन, जिहालत को अपना अकीदा बनाना, यह हाकिम शाम और उससे पहले शैतान से शुरू हुआ। अंग्रेजों जब वही मुझे मिलाना तो उससे लिंक था, लेकिन अब टाइम नहीं रहा, कि जब वो यूरोप का प्लेग आया और इंग्लैंड की ग्रेट फायर लंदन की और उसके नतीजे में ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, तो वहां से जो खराबी आगे बढ़ी, दुनिया पे कब्जा करना है, सारी दुनिया सरेंडर कर रही है, आलम इस्लाम जो है वो रिजिस्ट कर रहा है। मुसलमान उस वक्त बहुत बड़ी पावर थी, ऑटोमन एम्पायर। सुना है कि आजकल पाकिस्तान टीवी पे कोई ऐसा ड्रामा दिखाया जा रहा है कि सारे पाकिस्तान में उसकी वजह से तहलका मचा हुआ, खैर मुझे नहीं पता। ऑटोमन एम्पायर एक ताकत थी, रिजिस्ट कर रहे। अब मुसलमानों के रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए उन्होंने 3 फितने मुसलमानों में प्लांट किए, एक इंडिया और पाकिस्तान में, कादियानियत झूठा नबी, एक ईरान में बाबी और बहाई मजहब झूठा इमाम जमाना, और फिर बाद में उसने खुदाई का दावा किया, और एक अरब दुनिया में वहाबियत। और ये तीनों फितनों में एक चीज मुश्तरक, और वो ये है कि ये तीनों अपने अलावा बाकी सारे आलम इस्लाम को काफिर और मुशरिक समझते हैं। उलमाए अहले सुन्नत आज के नहीं, उस वक्त के, जब ये वहाबियत आ रही थी खून के आंसू होते थे कि पैगंबर की हदीस है, अहले किबला जो एक किबले पे मुत्तफिक हैं इनको कभी काफिर ना कहना, और इन्होंने तमाम आलम इस्लाम को काफिर डिक्लेयर किया। कादियानियत का भी यही, सब पाकिस्तान के, इंडिया के, दुनिया भर के मुसलमान काफिर हैं अगर गुलाम अहमद कादियानी की नबूवत को ना मान। पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर, पहला फॉरेन मिनिस्टर था, बहुत काबिल आदमी, नमाज जनाजा पढ़ने से इंकार कर दिया, पढ़ने से इंकार कर दिया कायदे आजम की, ये काफिर की नमाज जनाजा हम नहीं पढ़ सकते। वहां जाके बैठ गया जहां पाकिस्तान के बाकी हिंदू और सिख बैठे थे। खैर बहाई मजहब, यह ईरान का इतना बड़ा फितना था, लेकिन इस वक्त असल बात हो रही है कि ये दोनों फिर भी नाकाम रहे। कामयाब हुआ वहाबियत वाला फितना, जिसकी बुनियाद इस बात पर कि सारा आलम इस्लाम काफिर मुशरिक है सिवाय हमारे। चुनाचे जब पहली बार इनको मौका मिला हिजाज की, अच्छा इनका हेडक्वार्टर है नजद, नजद बीच में, यानी उसके एक तरफ चले जाइए तो मक्का मदीना है, दूसरी तरफ चले जाइए तो नजफ और करबला। और जब ये फितना आगे बढ़ा था उस वक्त ऑटोमन एम्पायर थी, अलग अलग मुल्क नहीं थे कि पासपोर्ट और वीजे, पूरा एक मुल्क, एक खिलाफत, किसी भी मुल्क में जा सकते थे। तो 4 मरतबा इन लोगों ने नजफ और करबला पे अटैक किया, नजद बीच में आ रहा, वहां से नजफ और करबला करीब, वही जो जहां से मजलिस शुरू हुई थी मैदान ओहद में। हिंदा ने कब अटैक किया मदीने पे? ईद की खुशियां, मुसलमान ईद मना रहे होंगे, गाफिल होंगे, चुनाचे इस वक्त अटैक करो। हिंदा की सीरत पर चलने वाले, अबू सुफियान को अपना पीर और मुर्शिद समझने वाले वहाबियों ने जो पहला अटैक नजफ पे किया था, नजफ पे नहीं किया था, करबला पे, 18 जिलेज गदीर का दिन था, और 18 जिलेज को पूरे करबला की खासियत थी कि सिवाय औरतों के, छोटे बच्चों के और बूढ़े मर्दों के, सब नजफ जाते थे। गदीर मौला का रोजा, खाली जाके वो 2-4 कसीदे नहीं पढ़ते थे, तशदीद बैत करते थे, जिस तरह ये समझते थे जैसे आज हम पैगंबर के जमाने की गदीर में बैठे हैं और पैगंबर कह रहे हैं मनकुन तो मौला, किस तरह अली के हाथ पे हाथ रख के बैत करना। याद होगा आपको शब कदर 23 रमजान के अमाल मैंने अख्तिताम पहुंचाए थे दुआ अहद की बैत पर। नहीं खैर आपको क्या याद होगा, तो उसमें तो लोग थे ही नहीं, क्योंकि एक वक्त में जब कई जगह पे प्रोग्राम हो तो लोगों के पास चॉइस ज्यादा हो, तो जिन चीजों की बिना पे लोग किसी तरफ दौड़ के जाते हैं उनमें से हर चीज मेरे आमाल में नहीं थी, लेकिन बाहर पूरा करबला खाली होता था सिवाय औरतों के, सिवाय बच्चों के और सिवाय बूढ़े लोगों के, या जो एसेंशियल सर्विसेज। पहला अटैक वहां हुआ बकीबाद में, करबला पे अटैक हुआ क्योंकि करबला खाली, उसके बाद यह तरीका हुआ कि नहीं ऐसे मौकों पर भी लोग शहर खाली नहीं करते। इमाम मजलूम के रोजे तक पहुंचे, ये गुंबद तोड़ा गया, लेकिन गुंबद मजहबी अकीदे की वजह से नहीं तोड़ा गया, डाके की वजह से उसमें जो हीरे और जवाहरात और जमर्रुद और ये सारे कीमती जवाहरात लगे थे, बाकायदा इतने ऊंट भर के ले जाए गए करबला से जो इन्होंने माल और असबाब लूटा। कोई औरत को नहीं छोड़ा, किसी बच्चे को नहीं छोड़ा। इसी महीने आज 31 मई है ना, अभी आधी रात नहीं हुई, इसी महीने अफगानिस्तान में उस शिया हॉस्पिटल पे हमला हुआ, मैटरनिटी होम में, जहां और भी पेशेंट थे, सबको छोड़ के सिर्फ प्रेग्नेंट औरतों को या न्यू बॉर्न बेबी को निशाना बनाया गया शिया। ये हुआ था करबला, जो बाद में उसकी रिपोर्ट तैयार हुई। 22,000 कैजुअल्टीज आज से 200 साल पहले करबला में हुई थी। हर इमाम मजलूम की जरी के करीब जिस अंदाज से बेहुदा हरकतें की गई, हमें यजीद का मदीना का अटैक याद आ रहा, और उसके बाद भी हर दो एक दो साल के बाद या नजफ पे अटैक या करबला पे या नजफ पे या करबला। कितने उलमा, कितने मराजे, कितने मुश्तहिदीन, वहाबियों का यह हमला था। यह नजद है, नजद के ईस्ट में यह आता। अब फिर वेस्ट की जानिब चले, और बहुत कम लोगों को मालूम है लेकिन यह एक फैक्ट है तारीख का, जन्नतुल बकी पे 2 मरतबा इन्होंने अटैक किया है, 2 मरतबा जन्नतुल बकी के रोजे तोड़े। जो फर्स्ट टाइम था ये 1806-1807 था, और 50 साल के बाद वो रोजे दोबारा तामीर हो गए, और फिर 1926 में वो अटैक किया जिस पर प्रोटेस्ट करने के लिए आज हम यहां पे जमा हुए। आज हमारे इस प्रोटेस्ट का मकसद दुनिया को भी बताना, और उस मछली, उस मेंढक या परिंदे की सुन्नत के अमल करना। जब हजरत इब्राहिम को आग में फेंका जा रहा है, वो परिंदा अपनी चोंच से पानी के चंद कतरे गिरा रहा है आग पर, पूछा जा रहा पागल हो रहे हो या ऐसी आग तुम्हारे चंद कतरे का। मेरा मसला ये नहीं है कि इनको खत्म करो, मेरा मसला है कि कयामत के दिन खुदा सवाल करेगा कि मेरा खलील तुम्हारे सामने आग में जलता रहा, तुमने क्या जवाब दिया, जितनी मेरी कैपेसिटी। कयामत में हमसे सवाल होगा, रसूल की बेटी का रोजा टूट गया, इमाम हसन के रोजे के ऊपर बिल्डोजर चला दिए गए, औलाद रसूल की तौहीन की गई, तुमने क्या किया। आज की ये मजलिस अल असर सेंटर मेलबर्न में इस सवाल के तफसीली जवाब की एक शिक, ये हमारा ओनली रिप्लाई नहीं लेकिन है कि खुदा बंदा जब जब वो तारीख आई हमने अपना एक प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड कराया, बाकी तो जो कुछ हम कर रहे हैं वो कर ही रहे। पहला अटैक जो था 1806, सर रिचर्ड बर्टन, बहुत मशहूर इंग्लैंड का सैयाह है जिसने अल्फ लैला का अरबियन नाइट का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है, उससे पहले वाला जो ये मुसलमान बन के मक्के मदीने में एंटर हुआ था, क्योंकि मक्के मदीने में नॉन मुस्लिम को जाने की परमिशन नहीं थी, तो इसने अपने आप को मुसलमान शो किया था। इससे पहले वाला जो था वो 1809 में जन्नत मदीने गया था। वो कहता था जन्नतुल बकी में मैं एंटर हुआ हूं तो मुझे ऐसा लगा कि कोई अर्थक्वेक आया है पूरी बकी संदाज से, जैसे कोई जलजला आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, शहर तबाह होकर रह जाते हैं, इस अंदाज से सारे रोजे टूटे हुए मुनहदिम पड़े हुए। मगर 50 साल के बाद दोबारा उस अंदाज से ये रोजे बने कि आज आप जिस डेमोलेशन की याद मना रहे हैं, वो शानदार रोजे, वो तस्वीरें, वो पिक्चर जो आपको इंटरनेट पे और हर जगह नजर आ रही हैं, ये बाद के बने हुए रोजे हैं, फर्स्ट डेमोलेशन के बाद। मेरा अंदाजा है कि अगर आप इंटरनेट पे जाए, विकिपीडिया वगैरह या और फर्स्ट डेमोलेशन सेकंड डेमोलेशन टाइप करें तो पूरी हिस्ट्री आ जाएगी। कल आप यही एक काम कर लीजिएगा। तो वहाबियत ने जब ताकत पकड़ी तो पहला अटैक किया था, लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज किया कि बकरी में तो पैगंबर के जिगर के वो टुकड़े दफन, कि उसकी आगे तो सारी कायनात की कोई हैसियत नहीं, लेकिन इनके मजालिम में ये भी है कि ये फिर मैदान ओहद गए। जनाब हमजा का रोजा था, जनाब हमजा के रोजे को भी डिमोलिश किया गया। वही जो शुरू तकरीर में मैंने कहा था कि ओहद की लड़ाई की डेट्स हैं तो आज की तारीख से बहुत मैच कर रहा है ओहद का वाकया। मैदान ओहद में जनाब हमजा की कब्र पे जुल्म हुआ, शुरू तकरीर में था उनकी बॉडी पे जुल्म हुआ है, मैयत पे, और आखिर तकरीर में खाली मैयत नहीं पूरा रोजा बना था शानदार, किस तरह से तो तोड़ा गया। जो लोग भी हज और उमरा करके आते हैं उनसे पूछे आज जनाब हमजा के रोजे की क्या हालत। अब मैं हम लोग ये तस्करा इसलिए नहीं करते हैं कि इससे जरा सा बकरी के रोजों की अहमियत थोड़ी सी कम होती ना महसूस हो, ऐसा लगे दोनों इक्वल नहीं। चारदा मासूमीन, चारदा मासूमीन है जनाब हमजा, बाद में आते। इसीलिए हत्ता हमारे यहां मक्के का जो कब्रिस्तान है, जैसे मदीने का जन्नतुल बकी है, मक्के का जन्नतुल माला वो भी बहुत अहम। हजरत अबू तालिब का रोजा है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब का रोजा है, हजरत खदीजा ताहिरा का रोजा है, हमारी और आपकी मां, वो भी इन वहाबियों ने बकी से पहले अटैक करके डिमोलिश किया। उसका भी दिल चाहता है बयान का, लेकिन यह है कि कहीं ऐसा ना बकी के रोजों की अहमियत इनके बराबर आ जाए। हम इनमें से हर एक की अजमत को मानते हैं, लेकिन हसन मुश्तबा सज्जाद सज्जाद उनका रुतबा बुलंद। लेकिन बहरहाल जब मजालिम की बात आ रही और जब उसने कुदाल उठाई जिसने जन्नतुल बकी के रोजे तोड़े और पलट के देखा था रसूल खुदा के रोजे का गुम्बद नजर आ रहा था, कहा था ना हाजा सनमुल अकबर, दुनिया का सबसे बड़ा बुत तो यह है, पहले इसका खात्मा करना। ये वो वहाबी फिक्र है कि अपने हाथ में असा लेके चलता है, वो मुस्ताहब है ना, जब आदमी 40 का हो जाए, 40 क्रॉस करे तो मुस्ताहब है कि अपने हाथ में असा लेके चलो। कहा हाजा असाया अफजल मिन मोहम्मदिन, ये मेरा जो असा है ना ये मोहम्मद से अफजल है, या खैर मिन मोहम्मद, मोहम्मद से बेहतर, क्योंकि ये मुझे फायदा पहुंचा रहा है। मोहम्मद क्या फायदा पहुंचा सकता है, वो तो कब्र में मिलके मिट्टी में मिलके खत्म हो गए। ये तो फिक्र है उस मजहब की जिहालत और लाइल में। अब बहुत ही मुख्तसर मैं तीन छोटी बातें अर्ज करूं और मसाइब पर आ जाऊं। मैंने आज स्पेशल रिक्वेस्ट की थी अल असर के इंतजामिया से कि मैं 60 मिनट में बात नहीं कर कंप्लीट करूंगा, 70 मिनट मुझे दिए जाए, लेकिन यहां तो 80 तो अभी हो गए, शायद मसाइब खत्म होने तक 90 हो जाए। लेकिन बहुत ही मुख्तसर सिर्फ दो हदीसें इनके पास हैं जिसे ये रिपीट कर करके ये साबित करते हैं कि जो हमने अमल किया वो ठीक किया। एक जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी की हदीस है, वो हदीस किसा के भी रावी है, लेकिन नहीं, जिस आदमी ने कहा अबू जुबैर कि मैंने जाबिर से ये जुमला सुना है, वो इंतहाई जईफ आदमी था, इंतहाई झूठा आदमी था, जिससे नाराज हो जाए उस पर तोमत लगा लेता था, आदत थी उसकी। एक झूठ होता है, एक उससे बड़ी कैटेगरी तोहमत। 5 किताबों में ये रिवायत है अलग अलग रावियों से, लेकिन सब रावी आखिर में कहते हमने अबू जुबैर से सुना, और अभी जुबैर कहते मैंने जाबिर से सुना है कि उन्होंने कहा रसूलुल्लाह ने ये फरमाया है कि कब्र पे इमारत ना बनाओ। एक ये हदीस, वही घुमा घुमा के लाएंगे, कभी एक किताब का नाम लेंगे, कभी दूसरी का, कभी तीसरी का, तो ऐसा लगेगा 5 हदीस एक। और एक हदीस वो है कि जो मौला के हवाले से कि वो साहबी कहते हैं कि अली ने मुझे बुला के कहा जाओ जाके वो काम करो जो रसूल ने मेरे सुपुर्द किया है कि वला कब्रन मुशरफन इल्ला सवैता, जो कब्र भी जमीन से ऊंची नजर आए उसको तोड़ दो। जलालुद्दीन सुयूती कहते हैं यह अजीब रावी है कि पूरे जखीरा हदीस में सैकड़ों हजारों हदीसें, इसकी सिर्फ एक हदीस हमारे पास है और वो भी ये। कहां था, किधर था, ये रावी किधर से आया, इसने पूरी जिंदगी में सिर्फ एक जुमला सुना और वो भी ये। अच्छा अब ये तो बात हो गई रावियों की, और दोनों हदीसों के अल्फाज देखे उसमें भी ये पैगाम नहीं। अली ने कहा जो कब्र बुलंद है सवै तो हूं, अरबी में सव्वा किसे कहते हैं, नमाज ईद में सब बेस में रब कलाल लजी खालका फसव्वा, अल्लाह ने इंसान को पैदा करके उसको ठीक ठाक बनाया। सव्वा तो कहते हैं कब्र को ठीक करना, तोड़ना नहीं। अब वक्त नहीं है वरना तो मैं इसकी तफसील में जाता। तमाम उलमा इस बात में मुत्तफिक है कि मौलाए कायनात की खिलाफत में जब जनाब मैमूना का इंतकाल हुआ, जो पैगंबर की वो बीवी जो मदीने से बाहर दफन है, आज भी हम जब जाते हैं ना मक्के की जियारत में तो ये जियारत करते, मकाम सरफ में उनका इंतकाल हुआ और उनकी जहां इंतकाल हुआ वहां पे एक छत पड़ी हुई थी, उसी में उनको दफन किया गया मौला के होते हुए। अब पहले कच्ची दीवारें थी, आजकल पुख्ता होने लगी, आरसीसी कंस्ट्रक्शन होने लगी, पहले खजूर के पत्तों की छत थी, आजकल मजबूत छत हो गई, लेकिन बात तो वही रही ना। और तो और खुद रसूल खुदा को जहां दफन किया गया जब दफन किया गया, आज की बात नहीं कि कहते हैं कि बाद के हुक्मरानों ने बनाया, उनके हुजरे में दफन किया गया, दीवार भी है और उसके ऊपर छत भी है। और किसी किताब में नहीं है कि पैगंबर के लिए स्पेशल हुक्म आया, 9 शादियां करने का हुक्म पैगंबर के लिए स्पेशल, ये तो नहीं। और अगर है भी तो हजरत अबू बकर को भी तो वहीं दफन किया गया, उनके लिए कौन से स्पेशल हुक्म, हजरत उमर को भी तो वहीं दफन किया गया। और मुख्तसर बात सूरह कहफ की 23वीं आयत, खत्म बात। बहुत सारी बातें मेरे जहन में थी जो आज मुझे कहना था। कालबनु अलैहिम बुनियाना, कुरान कहता है कि जब वो असाबे काफ का लोगों को पता चला कि वो सो रहे हैं, या बाद रिवायतों में कि वो मर गए, इख्तलाफ हो गया कौम में, कौम ने कहा कि इनके ऊपर एक इमारत बना दो। और फिर एक लफ्ज छोड़कर वकाल लजीना गलबू अमरहू, और वो लोग जिनकी बात आखिर में मान ली गई, उन्होंने कहा लनत तखे जन्ना अलैहि मस्जिदा, इमारत क्यों बनाओ, इनकी कब्रों के ऊपर एक मस्जिद बना दो। कोई कुरान कंडेम नहीं कर रहा, कोई ऐसा लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहा जो तौहीन का है, कोई ऐसा लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहा कि गलत नजरियात थे। कुरान बिल्कुल नहीं कह रहा ला यशरून, ये कैसे जाहिल लोग हैं, कैसे बेखबर लोग हैं। दो मशवरे दिए गए, एक का था इमारत बना, एक का था मस्जिद बना, इसी का नाम रोज़े। तो कुरान हो, हदीस हो, तारीख हो, हर चीज से साबित है कि वहाबियत गलत है, लेकिन मसला ये कि वो किसी अकीदे और नजरिए की वजह से काम को थोड़ी कर रहे हैं, उनको तो आलम इस्लाम को काफिर साबित करना। चुनाच जब इनकी पहली हुकूमत कायम हुई थी, इन्होंने तमाम मुसलमानों पर ग्रेजुअली हज की पाबंदी लगाना शुरू की। 1806 में बकरी पे पहला अटैक हुआ जो हुकूमत कायम हुई थी, 1806 और 1807 इराक ईरान के हाजियों पर पाबंदी, वो हज नहीं कर सकते, काफिर काफिर मक्के में नहीं आएगा। 1808 और 1809 शाम और मिस्र के हाजियों पर पाबंदी, वो काफिर। तो कही हुकूमत खत्म हो गई, क्योंकि उस वक्त वो मुझसे नहीं पढ़ा जाता नाम, कितना मुश्किल है, उर्तुगलर तुगरल जो आजकल बहुत फेमस नाम है, उस्मानी खलीफत खिलाफत कायम थी, मिस्र से अटैक हुआ, इनका खात्मा हो गया, सारे मुसलमान नजिस थे, काफिर हैं, इनको आने ही नहीं देंगे मक्के मदीने में, क्योंकि असल मकसद वही था कि आलम इस्लाम की मेजोरिटी को काफिर बनाना। ये वहाबियत आज भी हमारे सीने पर, हालात कुछ बदल रहे हैं लेकिन अभी इतने भी नहीं बदले। अलबत्ता ये सब तो हमने इसलिए कहा कि हमारा कलेजा जलता है, जिगर टुकड़े टुकड़े होता, आंखों में आंसू आते जब हम ये देखते हैं कि सऊदी अरब उस सरजमीन का नाम जहां इतनी रोशनी है, इतनी लाइट है, उनके पास इतनी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी कि रात के 2 बजे आप किसी छोटी सी गली में जाए और सुई गिर पड़े तो आप उस सुई को उठा सकेंगे, इतनी रोशनी। लेकिन अगर कहीं अंधेरा, अगर कहीं वीरानी, वो ये कब्र फातिमा है, वो ये कब्र मासूमी। जब हम ये देखते हैं कि वहां गर्मियों में दोपहर के वक्त इतनी शदीद गर्मी होती है, पूरी मस्जिद नबवी एयर कंडीशन कर दी गई, पूरी मस्जिद के बाहर छतरियां लगा दी गई, लेकिन अगर कोई कब्र ऐसी है, कोई जगह ऐसी है जो धूप के अंदर तप रही है और जल रही है, वो कब्र सैयदा से मंसूब जगह है और 4 मासूमीन की कब्र है। ये हम और आप खून के आंसू होते हैं, लेकिन आले मोहम्मद ने तो नाना के दीन के लिए पहले दिन से ऐलान कर दिया, क्या है तलवारों, अगर नाना का दीन बचेगा मेरे टुकड़े होने से, आओ तलवारों हुसैन के जिस्म को टुकड़े टुकड़े कर दो, हुसैन को अपनी शहादत कबूल है, हुसैन को अपने लाशे की बामारी कबूल है, लेकिन नाना का दीन बच जाए। ये मेरी तकरीर के दरमियान का हिस्सा था, तो यह 8 शव्वाल आपसे तकाजा करता है कि नाना का दीन कभी हाथ से ना जाने दे, लेकिन मसाइब को आगे बढ़ाता हूं। और वो ये है कि जब कभी मसाइब पढ़े जाते हैं तो आदमी किसको जाके कंडोलेंस करता है और पुरसा देता है, जो उस खानदान का सबसे बड़ा उस वक्त होता। मगर जब ये मसाइब नाजिल हुए तो 11 के 11 इमाम दुनिया से जा चुके थे, इमामत तो इमाम जमाना की है ना, ये गम ये मुसीबत ये इम्तिहान तो अल्लाह ने इमाम जमाना का लिया है ना। अरे आप में से अगर कोई साहिब ताकत हो, मजबूरी ना हो, साहिब ताकत, और आपकी आंखों के सामने कोई आपकी मां की कब्र को तोड़ने के लिए आगे बढ़ जाए, आप अपनी जान दे देंगे? हाय मेरे जमाने का इमाम कितना साबिर है, उसकी आंखों के सामने ये जुल्म अजीम बर्पा हो रहा। भाई ये तो वो मंजिल है जहां पे मौला अली तक, मैं ये नहीं कहता कि सब्र खत्म हो गया, जो वादा लिया था रसूलुल्लाह ने वो वादे की हद खत्म हो गई थी, अली तक बर्दाश्त ना कर सका। बिहारुल अनवार की 10वीं जिल्द में ये रिवायत है, इसी पे आज की मजलिस खत्म कर रहा हूं। फातिमा पे वो सारे मजालिम हो गए जिसका सिलसिला बाबा की मौत से शुरू हुआ और आज तक ये सिलसिला जारी। लेकिन उस जमाने के एतबार से वो बजाहिर सारे मजालिम खत्म हो गए, किन मानों में फातिमा दुनिया से चली गई, पहलुए शिकस्ता के साथ गई, टूटी हुई पसलियों के साथ गई, मोहसिन की शहादत देखने के साथ गई, घर के जले हुए दरवाजे को देखने के साथ गई, चली गई फातिमा दुनिया से। रात के अंधेरे में मौला ने फातिमा को ले जाके दफन किया। अगला दिन आया, चूंकि फातिमा का हुजरा तो बिल्कुल मस्जिद से मिला हुआ है ना, मस्जिद में हाकिम वक्त बैठा, उसके मुशीर बैठे, कहने लगे कल क्या बात है पूरी रात फातिमा के रोने की आवाज नहीं आई, हमने फातिमा को दिन के वक्त रोने से मना किया तो वो बाहर चली जाती है मदीने, रात को तो रोती, कल तो ये आवाज नहीं आई, मालूम तो करो क्या चीज। पता चला फातिमा तो रात के वक्त दुनिया से जा चुकी और दफन भी कर दी गई। मौला ने कई जगह निशान कब्र बनाए थे, उनमें से एक बकरी भी था। बस जैसे ही ये सुना आपस में कहने लगे, जब ये खबर फैलेगी कि रसूल की बेटी दुनिया से चली गई और हम रसूल के जानशीन हैं, सक्सेसर हैं, तख्ते नबुवत पे खिलाफत पे बैठे हैं, दुनिया पूछेगी रसूल की बेटी की तुमने नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ी, क्या जवाब देंगे? कोई जवाब तो होना चाहिए। जवाब तैयार करने के लिए क्या किया, कहा कि कब्र फातिमा को खोला जाएगा और मैयत को निकाला जाएगा, मगर इस दफा जो हुक्म जारी हुआ उसमें एक लफ्ज बार बार रिपीट हो रहा, पूरे एहतराम के साथ विद फुल प्रोटोकॉल विद फुल रिस्पेक्ट, कहा कब्र फातिमा को बड़े एहतराम के साथ खोला जाएगा, मैयत को बड़े एहतराम के साथ निकाला जाएगा, और एहतराम का तकाजा यह कि पहले कब्र के चारों तरफ कनाते लगाई जाएंगी, पर्दे लगाए जाएंगे, कोई नामहरम मर्द तो नामहरम मर्द, कोई जवान औरत भी वहां ना जाने पाए। रसूलुल्लाह के जमाने की जो सहाबियात हैं उनमें भी जो बहुत ही बूढ़ी हैं सिर्फ वो बुलाई जाएंगी, वो कब्र बहुत कब्र अभी बिल्कुल ताजा है, वो कब्र की मिट्टी को पूरे एहतराम से हटाएंगी, पूरे एहतराम से मैयत को निकालेंगी, हत्तल इम्कान आंखें या बंद करेंगी या आंखें फेरेंगी और उसके गहवारे पे मैयत रख के चादर डाल देंगी, कनात से बाहर लाएंगी, भाई मैयत वहीं रखी रहेगी, हम नमाज पढ़ेंगे, हम नमाज पढ़ के फौरन चले जाएंगे और ये मैयत दोबारा बड़े एहतराम के साथ दफन होगी और दोबारा कब्र को बंद किया जाएगा। सहाबियात आएंगी, वो भी जवान नहीं बूढ़ी, पर्दे लगाए जाएंगे, एहतराम के साथ आंखें बंद करके मैयत को उठाया जाएगा, नमाज पढ़ के फौरन सारे मर्द यहां से चले जाएंगे। इधर ये तैयारियां शुरू हुई, उन सहाबियात को जमा किया जा रहा, उधर मौला को खबर मिली बिहारुल अनवार जिल्द आशिर यानी वॉल्यूम 10। बस एक बार मौला गैज़ो गज़ब और जलाल के आलम में वही ज़ुल्फ़िकार लेकर जो जंगे उहद में नाजिल हुई अपने हुजरे से बाहर आते और इतनी तेजी के साथ आए, इतनी तेजी के साथ कब्र की जरा सी मिट्टी भी ना हटने पाए, इतनी जल्दी से आए, सर पे अमामा भी नहीं है, पाँव में जूता भी नहीं है, हाथ आस्तीने बुलंद है, मुंह से कफ जारी है, हाथ में ज़ुल्फ़िकार हैदर है और आके कब्र फातिमा पे बैठ गए। जालिमों अगर किसी ने कब्र फातिमा को हाथ लगाया अब अली की तलवार नहीं रुकेगी। रसूलुल्लाह ने आखिरी वक्त में मुझसे एक वादा लिया था, उस सारी बातों पर मैंने अमल किया है, ये उस वादे में शामिल नहीं था, अब अली की तलवार ना रुकेगी। अली को इतने जलाल के आलम में देखा, जालिम घबरा के पीछे हटे, एक दूसरे से कहने लगे रसूलुल्लाह पहले कह गए थे ऐसे वक्त में कोई अली के सामने ना आए, चलो चलो वापिस चलो, ये कह के चले गए। अब मेरा एक जुमला है, या अमीर अल मोमिनीन, या हल्लाल मुश्किलात, या मौलाए कायनात, आपने अपनी ज़ुल्फ़िकार की मदद से 11 हिजरी में कब्रे फातिमा को इन जालिमों के जुल्म से बचा लिया, लेकिन जरा आइए 1344 हिजरा के मदीने की जन्नतुल बकी में। और एक जुमला मुझे امام زمانہ سے کہنا ہے، اے میرے زمانے کے امام، اے حجت خدا، آپ کے دادا کا جب یہ امتحان لیا گیا تو آپ کا دادا ذوالفقار لے کے اپنی بیوی کی قبر بچانے آ گیا، ہائے یہ آپ کی امامت تھی جب 8 شوال 1344 ہجری کی وہ منحوس صبح نمودار ہوئی کہ ایک مرتبہ یہ سارے بغضی علی کینے اور عداوت میں بھرے ہوئے دشمنان اہل بیت بقی میں کدالے لے کے داخل ہوئے، بلڈوزر لے کے داخل ہوئے، پوچھنے لگے یہاں قبر فاطمہ اور قبر معصومین کون سی ہے؟ لوگوں نے کہا یہ روضہ ہے معصومین کا، یہ ہے قبہ بنی ہاشم۔ بس ایک مرتبہ بلڈوزر کو حکم دیا آگے بڑھو، بلڈوزر آگے بڑھا، وہ روضے سے ٹکرایا، وہ قبہ گرا، وہ روضہ ٹوٹ کے گرا، وہ زری ٹوٹ کے گری، نشان قبر ظاہر ہوا۔ اب کدال والے آگے بڑھے، مولا نے کہا کوئی اپنے ہاتھ کی انگلیاں بھی فاطمہ کی قبر کی مٹی تک نہ پہنچائے، اور یہاں کدال چلی قبر فاطمہ پہ کدال۔ اے میرے مولا امام زمانہ، العصر اسلامک سینٹر میلبرن کے ان مومنین سے جو یہاں موجود ہیں یا یہ مجلس سن رہے ہیں، پرسہ قبول کیجئے، ہم آپ کو پرسہ دینے آئے ہیں آپ کی دادی پر ڈھائے جانے والے مظالم کا، لیکن ایک سوال کر رہے ہیں، مولا آخر آپ نے ایسے موقع پہ برداشت کیسے کر لیا؟ تو مجھے یقین ہے ایک جواب ملے گا، اور میرا مولا کہے گا کون غیرت مند بیٹا یہ برداشت کر سکتا ہے، لیکن جب میں نے پلٹ کے میدان کربلا میں دیکھا میرا دادا سید الساجدین اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بوڑھے بابا کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے جا رہے، لاشا پامال کیا جا رہا، اور وہ حکم خدا سے صبر کر رہا ہے، تو میں نے بھی صبر کا مظاہرہ۔ اجرکم اللہ۔ خداوندہ شہزادی کونین اور اولاد فاطمہ پہ ڈھائی جانے والے ان مظالم کا واسطہ، ان ظلم کرنے والوں کو، ان کے بزرگوں کو، ان کی نسلوں کو نیست و نابود فرما اور اپنے سخت ترین عذاب میں مبتلا فرما خداوندہ، اور وہ وقت جلد از جلد لے کے آ کہ یہ ٹوٹی ہوئی قبریں، یہ ٹوٹے ہوئے روزے دوبارہ پرانی شان و شوکت بلکہ اس سے بھی زیادہ شان و شوکت اور رونق کے ساتھ آباد ہوں۔ خداوندہ جس دین کو بچانے کے لیے، جس شریعت کے تحفظ کے لیے معصوم میں قربانی دی ہے، ہمیں کم از کم اس پر حتی الامکان عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ تجھے جنت البقیع کی ان قبروں کا واسطہ، ہمارے جتنے مرحومین ہیں، خصوصاً آج برادر محترم فہیم مرچنٹ صاحب کی اہلیہ کا انتقال ہوا کل رات کو، اور ہمارے برادر محترم سرور صاحب کی ساس کا کل انتقال ہوا، خداوندہ تمام مرحومین خاص طور پر ان دو کو آل علیین میں جوار اہل بیت اور جوار معصومہ کونین صدیقہ طاہرہ سیدہ کائنات سے ملاق فرما۔ خداوندہ اسی جنت البقیع میں میرا بیمار امام سجاد بھی دفن ہے، تجھے میرے مولا کی بیماری کا واسطہ، دنیا بھر کے تمام بیماروں کو، خصوصاً کورونا ڈیزیز میں جو لوگ مبتلا اور خاص مومنین دنیا میں اس بیماری میں مبتلا ہیں، ان کو، اور خاص طور پہ میلبرن میں اگر کوئی مومن ہے، ایک مومنہ یہاں بھی اس وقت کینسر سے جنگ کر رہی ہیں، خداوندہ ان سب کو شفا کاملہ عطا فرما، اور خداوندہ ان مظالم کو سننے سے برداشت نہیں ہوتا ہے، اس لیے اپنی آخری حجت خون کربلا اور مظالم اہل بیت کا انتقام لینے والے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ رات غم کی بہت بڑی رات ہے، اس لیے دعا پہ ختم نہیں ہوگی، زیارت ابھی نہیں ہے، نوحہ خانی ہے، ماتم۔